हमारी आत्मा ने पाकर हमेशा के सुख को पाना है, वो कहाँ पर है? ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, धर्म स्थानों और मंदिरों में उसके गुणावाद गाए जाते हैं। तीर्थ जो है वहाँ पर ऐसे पुरुष रहे जिन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ा है, मौत की सौगात बने हैं। जैसे में आ रहे खसम की माने ऐसा करी जाने जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान के बन गए हैं और उनको कमीशन प्रभु की तरफ से दी गई कि जाओ जो मानस जाति है ह्यूमैनिटी है इसको जगाओ, आत्मा को जो जन्मों जन्म से बिकी पड़ी है फिर उसे वापस लाने का यत्न करो, उनको कहते हैं गुरु या साधु। जैसा आपको पता हो कि क्राइस्ट ने ये कहा, चाहे यस मैन चीज से लोग आप बहुत सारी बहरे घूमो चिच्चों में ढूंढ रहा था। जब मैं 1995 में यहाँ से गया था यही हाल था, लोग पूछने लगे मैं क्यों जाते हो, मुझे बहुत सारी बहरे वहाँ पर घूमा में ढूंढने जा रहा हूँ। तो ये काम उसका है, वो परमात्मा जो मौत जो किसी पोल पर इजहार करता है वो कराता है, वो भी एक पपेट है, मास्टर भी मालिक के हाथ में, वो वही काम करता है, अपनी मर्जी से नहीं काम करता है, गॉड्स विल प्रभु की जो विल होती है उसी को पुल चढ़ाता। तो जिनको ये ख्याल आ गया जो महापुरुष बन भी गया उसमें और आम इंसान में फर्क क्या है, वो भी आत्मा दे रही है, वो भी आत्मा दे रही है, जिस्मानी लिहाज से उसको भी वैसे ही हकूक मिले हैं जैसे और किसी को मिले हैं, बाहरी बनावट के लिहाज से और जिस्मानी अंदरूनी लिहाज से भी एक जैसे हकूक दिए हैं, दो हाथ हैं, दो आंख हैं, दो कान हैं, मुंह है, गुना है, इंद्रिय है, अंतर की बनावट भी जिसम की वैसे ही है जैसे सबकी है, दिल है, दिमाग है, फुफड़े हैं, रोज दिन म्युनिसिपैलिटी काम करती है, गंदगी को बाहर निकालती है, एक ही तरह से सब पैदा होते हैं, सब एक ही तरह से मरते हैं। तो परमात्मा की तरफ से एक जैसे हकूक सबको दिए गए हैं, फर्क अगर है तो किस बात में है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खेच रहे हैं, ये जिसम जिस्मानियत का इतना रूप बन चुका है, जिसम से आइडेंटिफाई हो चुका है कि अपने आप को भूल चुका है, अपने जीवन आधार को भूल चुका है। वो परमात्मा जिसको हमें तलाश करनी है वो आगे ही हमारा जीवन आधार है। ये जिसम जो हम लिए कर रहे हैं इट इज अ वंडरफुल हाउस वी लिव इन, इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम किसी और आधार पर इस जिसम में कायम हो, वो आधार ओवर सेल्फ कहो उसी को परमात्मा कहते हैं। नहीं तो जिसमें 9 सुराख हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नासिका के, मुंह गुदा और इंद्रिय, हमारी रूह को बाहर भाग जाना चाहिए, भाग नहीं सकते, पेट का सारा ऑपरेशन कर दो तो भी निकल नहीं सकते, दिमाग का ऑपरेशन हेड का कर लो तो भी नहीं निकल सकते, तो पांव फिसलता मर जाते। तो सबकी आत्मा उस आधार पर इस जिस्म के साथ कायम है, जब वो आधार हटता है तो जिस्म की परलय हो जाती है, उसी आधार पर खंड ब्रह्मण चल रहे हैं, जब वो आधार वहां से हट गया है तो वहां परले और महापरले हो जाते हैं। हमारी आत्मा ने मिलना किसे है उस अपने जीवन आधार से कब मिल सकती है, मौजूदा हालत में जो हम सबको बीमारी लगी पड़ी है वो यही है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खेच रहे हैं, ये फैलाव में जा रहे हैं। अगर बाहर से हटे इंद्रियों को भोगों से हटाएं, संयम में लाएं, मन को खड़ा करें और बुद्धि को भी स्थिर करें, तब अपने आप की होश आ सकती है। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। अब जो आत्मा मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है वो हकीकत से दूर, अब उसको पाना है कहाँ पर, वो तुम्हारे अंदर ही जिसे भी हरि का मंदिर है, बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड, जिसको मिला है इसी के अंतर मिला है, जिसको मिल रहा है इसी तरह मिल रहा है, अभी तक तो ये कानून बदला नहीं, जो चीज यहाँ हो वही तलाश करने से वो मिलेगी, बस तू कहीं ढूंढे कहीं कई बिलारे हाथ की तो कहीं और हो, हम उसे तलाश कहीं और करें, कहीं वो मिले ना। वो परमात्मा, वो ओवर सेल्फ जिसे जो हमारा जीवन आधार है, अगर वो आत्मा मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है तो उसे दूर जा रही है, अगर बाहर से हटो तो वो आगे ही मौजूद है। किंगडम ऑफ गॉड कहना की है बाई ऑब्जर्वेशन, प्रभु की बात क्या है बाहरी फैलाव से नहीं मिल सकती। एक्सेप्ट भी बॉल ए न्यू जो कहना था किंगडम ऑफ गॉड, जब तक तुम दो जन्मे नहीं बनते जो विज्ञान राइज अब बॉडी कॉन्शियसनेस जैसी जिसमानियों से ऊपर नहीं आते तो उसमें दुख नहीं मिलता। तो उसका पाना कहाँ है, तुम्हारे अंतर ही है, सिर्फ बाहर से आत्मा है। साई लाल जी पावना इधर पटना से उधर लाओ बाहर, तो परमात्मा कहाँ है जिसको हमने पाना है, वो तुम्हारे अंतर है, तुम्हारी आत्मा की आत्मा। जो चीज यहां वही मिलेगी, पढ़ने लिखने विचारने से इस बात की होश आती है कि महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा, ये उसका डाइजेस्ट है जो आपके सामने रखा गया। अब जो चीज यहां वही मिलेगी, सारी उम्र तुम ग्रंथ पोथियों पढ़ते रहो ठीक है। मैं अमेरिका का हाल तुम्हें कितना भी ध्यान करता रहो तुमको कोई यकीन आएगा? वो तो सच कहते हैं जिन्होंने देखा है, सुन संतन की साथी साथी सो बोलो जो देखे आके, जिन्होंने संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ ध्यान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देख चुके हैं, समझे। आंखों का देखा ध्यान ज्यादा कभी शिल्पति रखता, जो पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया हो वो ठीक, कंडीशन न कहने वाले को होती है न सुनने वाले को होती है। तो मैंने जब अमेरिका में गया था तो वहां लोगों ने मुझे सवाल किया था कि जिस तरीके से तुम ध्यान करते हो बड़ी सादा मालूम होती है, मगर अंडरस्टैंड ये कोई मुश्किल बात क्यों बन गई है? तो उनको मैंने यही जवाब दिया था, those who have had no first experience of the truth, they were beating about the bush, not knowing where to lay at them. ये सेल्फ एनालिसिस की है। Except you be born anew, you cannot enter the kingdom of God. जिस मानिए से ऊपर इंटर दी ज्ञान जब तक तुम आते नहीं हकीकत तुम्हारे अंदर उसको पा सकते नहीं, तो प्रभु का क्या हुआ पाना। बात देखने का नाम उससे नजदीकी है, बात जितना फैलाओ चाहे लेख हो या कर्म हो दोनों ही उससे जुड़े। अब ये बात हमको समझ आ गई, बहुत सारी दुनिया के लोग इतने आते हैं जिनको इस बात की अभी भूख आई है, जिसके अंदर ये भूख जाग उठी है, जब फूट पाते हंग रही है बात और पाते सर्च रही है, भूखे के लिए रोटी है और प्यासे के लिए पानी, जिसको अभी भूख की नहीं, जिनको भूख है वो इतने मनियों के घाट पर घिरे पड़े हैं, अटैच हैं, बंधन में हैं कि वो छोड़ना भी चाहते हैं छोड़ नहीं सकते। हैबिट बार बार करने से इस चीज की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, हैबिट जब मजबूत होती है टेंशन होती है तो नेचर में शामिल हो जाती है। अब इसी को अनलेवल करना बात हो जाए, प्रभु का पाना मुश्किल नहीं है, बाहर से हटना मुश्किल है, इसे समझ आ गए। अब जिनको इस बात की समझ भी आई है ग्रंथ पोथी पढ़ने से या महापुरुषों की सौ प्रसंग से, वो करना नहीं चाहते हैं मन उसको छोड़ देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नव लिखी है कि हे प्रभु मैं जानता हूँ कि तुझ में ला इंतहा दौलत है, मगर मैं इस जिस्म के कूड़े असल को बाहर नहीं फैल सकता। सब जानते हैं जब तो बोतें पड़ी हैं, जिनको हो चाहिए कि वाकई भाई प्रभु की याद प्रभु से मिलना सबसे ऊंचा है, पर आप देखेंगे कईयों को मुद्दे हो गए। जिनके अंतर सच्ची तड़प और ख्वाहिश है सचिन प्रभु के पाने की, तो उसके लिए क्या है कि तो वो प्रभु देखता है तो हमारे घट घट के जानने वाला ना, वो इतना नजदीक है हमारी आत्मा से जितना कोई और चीज नजदीक नहीं। चीड़ी की आहट वो पहले सुनता है, हाथी की चिंगार पीछे जाती है, तो दिल से जो आवार उसके पाने की तरफ जरा आवार खाती है तो वो सुनता है ये बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है। वो क्या करता है जो उसे मिला उसको मिला देता है। तो कोई जन हर्षण दे जो जुड़ा है वही जुड़ेगा ना, जो खुद आप नहीं जुड़ा मन के घाट पर बैठा है عالم ہے یا فاضل ہے، پھر اس نہ جڑا ہے نہ جوڑ سکے گا، جو نہ دیکھتا ہے وہی دکھا بھی سکے گا. تو یہ ایسے مہاپرش جب ملتے ہیں ہمیں رستہ بھی مل جاتا ہے. وہ دیا کرتے ہیں کچھ پونجی کہو، کیپیٹل کہو، راز کہو، آتموں کو مننے سے اوپر لا کر ہائر کانٹیکٹ کیا اس کی لائٹ جو وکاس کرنا، اس کی ساؤنڈ پرنسپل کا جس انر میں سنٹر میں کانٹیکٹ کر دینا، جس کی تھوڑی پونجی بھی مل جاتی ہے اور مل جانے پر بھی چیزوں کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ بھی 20-30 سال ہو گئے مہاپرش ملے، پونجی ملی، مگر ہم باتیں سنتے رہے اور سناتے رہے. آپ کہاں بیٹھے یہی دیکھیں. تو مہاپرش جب آتے ہیں کیا کہتے ہیں، بھائی بولنا بلانا چھوڑ دو، چپ چاپ ہو جاؤ، مستا ہی بن جاؤ. پرانے زمانوں میں ایجپشنز میں ایک قاعدہ تھا کہ جن کو انکیٹ کیا جاتا تھا، اپدیش ملتا تھا، ان کو یہ حکم تھا کہ سال خاموش رہو، بالکل کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرو، جو چیز ملی اس کی کمائی کرو. جن کا اندر رستہ کھلتا تھا، رستے کھلنے کا مطلب کیا ہے، انجوں کے گھر سے روح پڑھاتی تھی، جڑ چیتن علیحدہ ہوتی تھی، اندر اس کی جوتی کا وکاس ہوتا تھا، اس کو اپاپتائی کر کے کہا کرتے تھے، پہلے کو مسٹائی خاموش. آج اس مالک کی کرپا سے ہر ایک کو پہلے ہی اپاپتائی بن جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، تھوڑی لائٹ کی پونجی مل جاتی ہے، اور کون سا دھنی کی مل جاتی ہے، ساؤنڈ پرنسپل کی. تو سال سال کے بعد جب یہ چیز ملے تو اس کو کرنا تھا، اس کو بڑھانا تھا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ وہ چیز ہے اس کو آج چھوڑ ہی دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کا سب سے بڑا آدر ہے، ہم مگر اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے، لوگوں کو سناتے رہے. تو مہاپرش جب آتے، ارے بھائی یہ کیوں وقت ضائع کرتے ہو، باتیں سنتے رہے، سناتے رہے، دوسروں کو جان چھانٹتے رہے، آپ کو کیا ملا؟ تو یاد رکھو جب آپ برف کے ساتھ بیٹھو گے نزدیک تو ٹھنڈک آئے گی، سب گرمی دور ہو جائے گی. آپ خیال کرو یا نہ کرو، اگر آگ کے پاس بیٹھو گے آپ کی سردی دور ہو جائے گی، خیال آپ اس کا دھیان کرو یا نہ کرو. جلاب کی گولی ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر بھول سے بھی کھا لی جائے تو بھی دست لگ جاتے ہیں. سوال جو چیز پوری ملی ہے اگر اس کو بڑھاؤ، اس کے روز روز لحاظ کرو، اپنے آپ یوں بڑھ جائے گا. ڈاکو سے ڈاکو بھی اگر ہو تو بھی مہاتما بن سکتے. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک مہاتما میں اور عام انسان میں فرق کیا ہے. مہاتما پہلے پورا شش بنتا ہے، جب پورا شش بن جائے تو گرو کام کرتا ہے. گرو سکھ گرو ہے، ایک گرو دیش چلا ہے. گرو پہلے پوری سکھ بنتا ہے، کون بنتا ہے، 20 دن گرو کا من مانے کا اپنے شکی کا جانے، جو 100% اس کی آگیا کا پالن کرتا ہے وہ حقیقت کو پا جاتا. تو وہی جب پربھو چن لیتا ہے، یہاں تو یہ ہے نا، آپ پریزیڈنٹ یا منسٹر پبلک چن لیا کرتے ہیں نا، ارے بھائی اس طرح یہ حالت ہے، اس طرح سے پربھو آپ اپائنٹ کرتا ہے، جاؤ بھائی کام کرو. پتا پوتے کے رنگی نے میں چھٹ تو ہی نوا جا، میں تمہیں پتر ساتھ کروں. جن دن کو ملی ہے انہوں نے دنیا کا بڑھار کیا ہے، ہمارے دل میں سب کے لیے آئے، پرانے زمانوں میں آئے یا بھائی. تو ایسے انبھی پوشوں کا نظریہ کیا ہوتا، سدگر ایسا جانیے جو سب سے لے ملائے گی. سدگر کون کا، کس کو کہتے ہیں، جس کی آتما من سے آزاد ہو کر وہ ست پرماتما کے ساتھ لگ کر اس کا موت بیچ بن رہی، اس کا نام ہے سدگر. وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے کہ سب آتما دے رہا ہے. سماجیں ہم لوگوں نے بنائی، پرماتما نے تو انسان بنائے، مین از اولڈر. سماجیں بڑے نوبل فرقوں سے بنائی گئی تھی تاکہ منوجین جو بھاگوں سے ملا ہے اس کو پا کر ہماری آتما پھر سے پربھو کے ساتھ جڑ جائے. یہ اگر چاہیے آدرش کہو منوجین پانے کو جو ہے، تو اندر بھی جب کوش آتے وہ دیکھتے سب آپ یہ ہم نے بیجز لگائے ہیں، کسی نے ہندو کا بیج اور ہے، مسلمان کا اور ہے، عیسائی کا اور ہے، जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं उनके अपने अपने कोट होते हैं ना, ऐसे ये कोट पहने हुए हैं। आत्मा देदारी ऑल दी सेम, हम इंसान हैं, इंसान आत्मा देदारी है, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की। तो अनवही पुष्य नजर से दुनिया को देखता, वहाँ ईस वेस्ट का सवाल नहीं, नॉर्थ साउथ का सवाल नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सवाल नहीं, जूश का सवाल नहीं। वो कहते हैं इंसान ऑल मैन काइंड वन, मानव की जात सभी की पहचान, ये नजरिया। वो क्या कहता है, अरे भाइयों उसको दिल में बड़ी हमदर्दी है किस बात की, उसके ऊपर कौन पावर काम करती है, गॉड इन मैन, दीदी माओ थी सब गॉड। राइट को हमेशा कहा करते थे ये भाई पिता से मिलो, तो लोगों ने एक दिन कहा कि क्या अच्छा हो अगर तुम तो हमें कभी पिता के दर्शन करा देते। चलेगा है ये ग्रीव इंजीनियरिंग तो जोश में आए, क्या लगे अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरम्यान रहा और तुम ये न जान सके कि मेज में मेरा पिता ही बैठकर काम कर रहा था। तो यहाँ तक कह दिया जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो इंसानी कोल के अंदर जो परमात्मा हो उसका निर्धार करे उसका नाम मात्र। मौलाना रूह साहब ने कहा गुफ्त पैगम्बर के हक फरमूदा, पैगम्बर साहब कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब को खुदा ने ये हुक्म फरमाया है क्या, मन गुंजुम हे दरबाराओं पर, मैं इतना बड़ा हूँ न बालाइयों में न बस्तियों में समाने के काबिल नहीं, दर जमीनों आसमानों अर्श भी, जमीनों और आसमानों पर और अर्शों पर भी ये सारी चीजें मिला लो फिर भी मैं इतना बड़ा हूँ मैं समा नहीं सकता। पर एक बात दर जले मोमन जमीनों में, जब एक हैरानी वाली बात यह है कि मैं मोमन के हृदय में समा जाता हूँ, गड़बड़ा था यह मिला तरफ, अगर मुझे पाना चाहते हो तो उसके पास ऐसा ह्यूमन पॉल का हो जिस पर वो गार्ड ठीक करता है वो तुम में भी है। सिर्फ फर्क यह है कि हमारी आत्मा मन के घाट पर गिरी पड़ी है, इसे राय जब आप करें फिर उसका मौत पीस पड़े और वो बन चुका। सब वो काट मेरे कन्या सुनी सही न कहो बलिहारी इस घट के जहाँ कट प्रगट हो, वो घट बलिहार जाने के काबिल है जिसमें वो प्रगट हो गया। तो जैसे ऐसे महापुरुष आते हैं ये बातें हमको सुनाते हैं, दो यू आर रेडी जो तैयार होते थे काम गुरु तैयार रेडी, वो उनको क्या कहते, अरे भाइयों बात समझ में आ गई इंटेलेक्चुअल लेवल से, मगर अभी आपको मिली नहीं की जो पूंजी आपको दी है इसको बढ़ाओ, जो हायर कॉन्टेक्ट से थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जाता है ना इस एक दिन के वक्त, ये पूंजी है जो मिलती है जिसको दिन दिन बढ़ाना है बाकायदा अभ्यास से और बाहरी संयम का जीवन बनाने से, एथिकल लाइफ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे वहां पर जब आते हैं कि यार भाई रोज दिन वक्त गाया किसी को दो साल चार साल दस साल बीस साल पचास साल जो गुजर रहे बातें करते रहे अपनी थ्योरी लोगों को समझाते रहे आपको क्या मिला है ना दिन कुछ भी नहीं, तो कहते बातें बनाना छोड़ दो भाई, जो सुना है उसको पल्ले बांधो अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, जो खुराक हजम होगी वही ताकत देगी, जो गला हजम नहीं होगी वो बीमारियां पैदा करे। ये बोलना बनाना लेक्चर देना कथा ज्ञान ये वो दूसरों का सूट सिद्ध करते रहना सीढ़ी आप एक कदम में चलना है इसमें हमारा नुकसान है। जो चीज या मोती होता है मोती शिप होती है उसमें एक कतरा पानी का लेकर जब वो बैठ जाती है उस वक्त नहीं निकलती जब तक उसमें मोती न बन जाए, मोती बन जाए फिर सतह पर आ जाती है। ऐसे ही जब अनबही पुष्ट मिल जाए आपको पूंजी मिल जाए उसको बढ़ाओ, उसी वक्त लोगों को पता लगाओ जब तुम बन जाओ हम पहले बखेरने लग जाते हैं, नतीजा क्या है तरक्की रुक जाती है, फिर मनिंद्र के घाट पर बह जाने के कारण फिर दुनिया का रूप बन जाता है, जैसे चीज मिली और न मिली बराबर हो जाती, इसमें शक नहीं। किसी महापुरुष का बीज बीजा हुआ काल और माया भी उसको जला नहीं सकती है, मगर देरी तो जरूर है। हमारे जो घुमाया करते थे कि दवा ली जाले में रख ली खाई नहीं बीमारी कैसे जा, तो महापुरुष कहते कि क्या करो इसको कुछ देना पड़ता क्या चीज, सबकी आत्मा मन के अधीन है ना, मन आगे इंद्रियों के अधीन इंद्रियों को वो खाए रहे हैं, बाहरी अटैचमेंट के कारण इसी का रूप बन गए, इससे परे का पता नहीं है जग मिथ्या जग नहीं मिथ्या। महात्मा सारे करते इससे परे जिंदगी है, देयर लाइफ बियॉन्ड, और उसका हम तजर्बा भी कर सकते हैं इसी जिंदगी में, अगर कोई सच्चे मानों में महात्मा मिल जाए वो खेचे सदगुरु बलवान, तो इंटरव्यू भी जान जाने का जो एक्सपीरियंस देना ये उसकी पूंजी है, इसको दिनों दिन बढ़ाओ, गुरु मुखावे जाए निशन एटवेल राइज अबाउ कर सकते हो जब भी आप क्या कितनी बार मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में सौ सौ बार, एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार नहीं सौ सौ बार। तो इसलिए ऐसे महापुरुष कहते हैं भाई क्या करो, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, तुम भाई मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो ताकि तुम हमेशा के जीवन को पा जाओ, समझे। यही और महापुरुष कहते हैं फायदा डेली से इनकॉल कहते हैं, मैं रोज मरता हूँ भाई, मरना किसको कहते हैं, आत्मा का मन जो के घाट से ऊपर आने का नाम, टू बी रीबॉर्न बॉर्न एंड यू दो जन्म बनना इसी को कहते हैं। ये किसके हाथ में है, किसी अन भरी पुरुष के जिसमें ये समर्था है कि बिठा कर वे आप कर सकते। तो महापुरुष ये क्या कहते हैं कि भाई दो काम सुनने को दिए, बोलने को एक जमान दी है, सुनो सुनो बोलो काम, उसका अनुभव करो जो चीज आपको मिली है, उसके लिए आपको डायरी रखवाने के लिए ताकीद की जाती है कि बाकायदा आपकी डायरी रखो, महीने दो महीने के बाद अपनी रिपोर्ट लो, ताकि आप ही ढीले न पड़ो, कुछ सदाचारी जीवन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फैलाओ से हटो, बाहरी अटैचमेंट अपने जीवन की पड़ताल करके जो कमजोरी है उनको वीड आउट करते चले जाओ, और साथ ही साथ रेगुलर टाइम देके आपको जो पहले दिन पूंजी मिली उसको दिन दिन बढ़ाओ, तुम उस गति को पा सकते जिसको एक महापुरुष ने पाया। एवरी सेंट हैज इट्स पास्ट एंड एवरी सेंट इन द फ्यूचर, जो एक महात्मा आज बन चुका है हमारी तरह कभी था, वो करते करते पहुंच गया, एक पहलवान स्ट्रॉन्ग मैन रेवल्ड इन स्ट्रेंथ एंड ए वीकर मैन वंडर्स हाउ ही गॉट इट, एक दिन में नहीं बना, रोज वर्जिश कर करके पहलवान जब बन गया, लोगों की नजरों में आ गया, कमजोर कर रही कैसे पहलवान बन गया, अरे अरे मेरे स्ट्रेंथ का बैकग्राउंड क्या है, पहलवान आप समय से क्या करते हैं, वर्जिश करते हुए अपनी अटेंशन को जिस्म में रखते हैं, क्योंकि आत्मा बड़ी बड़ी बलवान चीज है, वो परमात्मा महान आत्मा, एक बार कहने से एक को कवाओ पिछले हो लग रहे हो, एक बहुषा मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, उसके ख्याल जो बाहर में दुनिया एक्सप्रेशन में आ गई फिलहाल में आ गई, अरे हमारी आत्मा उसी के अंत इसमें बड़ा भारी बल है, मैं क्योंकि फैलाव के कारण मनुष्य के घाट पर ये निर्बल और कमजोर हो रही है, अगर इससे इसको हटा ले तो बड़ी भारी ताकत, सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं, अगर कॉन्वेक्स लेंस से गुजार दो तो आग लग जाती, तो खूबसूरत की जो बिजलियां फैल रही है अगर वो ये शुरू हो जाए बड़ी भारी ताकत, तो वो शुद्ध अगर पहलवानी करते जिसम में रखो जिसम को पहलवान बन गए, अगर उसी अटेंशन को आप दिमागी सेंटर से जोड़ो तो इंटेलेक्चुअल पहलवान बन जाए, उसी शुद्ध अटेंशन को अगर आप ओवर सेल्फ से जोड़ो तो रूहानी पहलवान बन जाए, यही फर्क है थोड़े बच्चों में परमार्थ करने के बाद, ये परम अर्थ है, ऐसा अर्थ है जो कभी नाश नहीं होता। व्हाट डज इट प्रॉफिट मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूज इज वन सोल, क्या हुआ अगर सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, आलिम बन गए, फाजिल बन गए, हाकिम बन गए, अगर तुमने अपनी आत्मा की तरफ तवज्जो नहीं की, इसलिए तुम्हारा जीवन बर्बाद चला गया, क्योंकि मनो जीवन ही में तुम ये काम कर सकते थे और किसी से नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं क्या इंसान, तूने तवज्जो बहुत सारी बारी सामानों को दे रखी है, उस तरफ तू तरक्की कर रहा है, अगर वही तवज्जो कुछ तू अपने आप की तरफ लगाए तो रूहानी तरक्की हो जाए। देख लो हमारा जिस बारी सामानों से ज्यादा कीमती है कौन सी बात है, हमारी आत्मा जिंदगी जिसम से ज्यादा कीमती है, तो हम कर क्या रहे हैं, इज नॉट बॉडी मोर देन द रेमेंट एंड लाइफ मोर देन द बीच, हमने बाहरी सामानों को बनाने में सारा टाइम सर्व किया है, जिसम के बनाने में सारा टाइम सर्व किया है, बुद्धि के बढ़ाने में सारा टाइम खर्च किया है, अपने आप के लिए क्या किया है, लिटिल से। महापुरुष जब आते हैं कहते हैं भाइयों वो ये नहीं कहते घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, वो कहते हैं भाई देख बोले जिन भागों से मिला है इसलिए तुम क्या करो, कुछ वक्त अपने आप की तरफ भी लो। हम जिस्मानी पहलवान बने, बुद्धि के पहलवान बने, इंटेलेक्चुअल जायंट्स बन गए, बड़ी बड़ी तफ्तीशें कर डाली और ऐसी तफ्तीशें कर डाली हैं एटम हम हाइड्रोजन जब बम गए जब ये खतरा दिए दिखता है उन्हें। अगर हम अपने आप की तरफ पहले तवज्जो दे देते तो ये चीजें पीछे आती तो यही चीजें हमारी मददगार हो जाती, क्योंकि हमने अपने आप की तरफ तवज्जो नहीं दी, इस तरफ किया यही खतरे का कारण बनना चाहिए। तो आप किसी समाज में रहो काम यही करना है, जब जब महापुरुष आते वो आपको ये नहीं कहते एड्रेस नहीं करते हिंदुओं सुनो या मुसलमानों सुनो या ईसाइयों सुनो या ज्यूज सुनो, वो कहते हैं इंसानों सुनो है आत्मा दे रहा है। अब आप देखकर क्या नजरिए है, तो किसी हर भाई पुरुष के पास आकर पहली चीज जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि सबके अंतर वही है, सबकी ताक पढ़ाई जाती रहती है, सब कहते हैं वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड, हम प्रभु के अंतर सब भाई और बहने। मैं जब अमेरिका में 1955 वर्जीनिया में गया था, वहाँ ईस्ट और वेस्ट की एक मीटिंग वाशिंगटन में अरेंज हुई थी, ईस्ट से मुझे चुना तो रिप्रेजेंट बच्चे को रिप्रेजेंट करो, वेस्ट से एक कहाँ से आदमी ने आना था जिसको चुना गया था, इस बात ऐसा हुआ कुछ दिन वो ना पहुंचा जो वेस्ट को रिप्रेजेंट करना था, तो उन्होंने कहा वेल रेडी वॉल वेस्ट यू अब ईस्ट एंड वेस्ट अब तुम्हारे हमारे यू रिप्रेजेंट बहुत अब नहीं। तो मैंने उसको क्या कहा भाई देखो इसमें चक में ये कहा गया देयर ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट एंड द टू शैल नेवर मीट, जो मैसे मैसे के लिए है और मगरब मगरब के लिए है, दोनों कभी दूसर नहीं रह सकेंगे। तो मैंने कहा ये हम लोगों ने कहा है, प्रभु का तो ये सारी क्रिएशन ये घर है, दे नो ईस्ट एंड नो वेस्ट नो नॉर्थ एंड नो साउथ, होल क्रिएशन इज आउट ऑफ गॉड, ये सारी प्रभु का घर है, सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास, निर्णय मुल्क है ये सब कमरे हैं उस मालिक के घर के, सो मेनी रूम हाउस और खाना, हवाई जहाजों ने ये जो फासला है इसको खत्म कर दिया, तो वो चले शाम को अमेरिका पहुंच। तो इंसान इंसान सब एक है, सबका जीवन आधार वही है, खाए हम किसी समाज में है, ये है नजरिया वही पूछू का हमेशा से रहा। जिस बात पर वो जोर देते हैं वो क्या है कि मनुष्य जीवन में हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी और योनि में नहीं कर सकते, और वो क्या है अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं। पहले हम आत्मा को मन इंद्र से आधार करें, अपने आप को जानें, सेल्फ नॉलेज सीक गॉड नॉलेज। जब तक हम अपने आप का अनुभव नहीं करते, अपने आप को चीनते नहीं, एनालाइज नहीं करते, माइंड और मैटर से मन इंद्र के घाट से ऊपर राइज अब नहीं करते, ना अपने आप की होश आएगी ना अपने जीवन आधार की होश आएगी। तो साथ इसके लिए क्या करना होगा, कुदरती बात है जिसकी आत्मा मन इंद्र के घाट पर बाय भोगोरसों में लंपट हो रही है वो ऊपर कैसे जा सकती, तो इसलिए संयम का जीवन बनाना होगा, नेक पाक जीवन और सदाचारी जीवन ये पहला कदम है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, ब्लेस्ड इज द प्योर इन हार्ट फॉर दिस एथिकल गॉड, वो हृदय मुबारक है कौन से जो पाक और पित्र हैं, सब लाइसेंस है क्योंकि ऐसे पित्र हृदय ही प्रभु को पा सके। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट आपको दिया गया परमार्थ के पास हो गए, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं इट इज साइंस ऑफ द सोल, ये आत्मा की साइंस है, मन इंद्र के घाट से आधार करके अपने आप को जानने और प्रभु के पहचान एज ए मैन प्रॉब्लम है। जिस समाज में है वही मुबारक रहे, उसी में रहो, बदलने की जरूरत नहीं। हर एक समाज में महापुरुष आए उन्होंने यही तालीम दी है, हर को नाम जप निर्मल कर बस जाय द आर्मी ऑफ गॉड। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, राइटियसनेस, ये जो राइटर ने कहा राइटियसनेस किसको कहते हैं, गुड थॉट गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो इसके बाद हमेशा यहां कहता है कि हर एक महापुरुष की मानी ली जाती है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की, क्योंकि हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, चाहे वो ईस्ट में आए या वेस्ट में आए हैं। तो इस वक्त एक शब्द आ रहा है गुरु अर्जुन साहब का, वो क्या कहते हैं गौर से सुनिए।
राज तो सोरे महला पांचवा घर पहला चौक सुखे गुरु गोविंद सलाइए गुरु गोविंद सलाइए भाई मन तन हृदय
पाकर उस हकीकत को पाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जिन्होंने पाया उनकी सोबत करो, बड़ी मोटी बात। इल्म सीखना है तो आलमों की सोबत अख्तियार करो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की सोबत अख्तियार करो। जिन्होंने जिस्म की अनाटमी करके चीर फाड़ करके देखा है कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बहाल हो सकता है, कैसी बीमारियां बनती हैं, कैसे दूर हो सकती हैं, उनकी सोबत करो। अरे भाई जिसने इंजीनियर बनना वो इंजीनियर की सोबत अख्तियार करे, जिन्होंने आत्मा का अनुभव करना वो आत्म अनुभव की सोबत करे, बड़ी मोटी बात। वो क्या करे वो गुरु से मिले। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंख बंद करते अंधेरा है ना, जो इस अंधेरे के चाय के पर्दे को हटा सकता है उसका नाम गुरु। अब तो अंधेरा ना आंख बंद करो, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे साधो सो करके मुझे। जो आंख बंद करके तुम्हारी सही के परे हुए पट आ सकता है, थोड़ी पूंजी भी दे सकता है, कैपिटल ऑफ लाइफ एंड साउंड प्रिंसिपल थोड़ा भी दे सकता है, उसका नाम गुरु। दूसरे असल ऐसी हस्ती के बड़ा चीज समझ ही नहीं आती। मिसाल दी है कि जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐसे चादर होने गुरबिंद खोर अल्लाह। अगर सौ चाप चढ़ हजार सूर्य चढ़ जाए, जिस आदमी की आंख में देखने की छाई थी नहीं, उसके लिए जाके चले जाते न चले। ये सौ चंदा हुए सूर्य चढ़े हजार, ऐसे चादर होने गुरबिंद खोर अल्लाह। फिर कहते हैं अंधेरी गुबार रहे ना, तो अंतर आंख का देना महात्माओं को उत्तर कभी चाहिए, चाहे वो आंख से बख्श दे लेकिन साइड वो इधर साइड बख्श दे, समझे जो महात्मा भी आता। फिर कहते हैं गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवा है, क्लियर कट महसूस नहीं होता। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, उनको ये पता नहीं बात क्या है, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है तीसरा कुछ कहता, मोटी मोटी बातें मिलती है छोटी छोटी बातें नहीं मिलती, वो कहते मालूम नहीं बात क्या है। जिसने देखा कि मैंने देखा फलाना दस्त है वहां लगा हुआ ऐसी, पर ये जगह है जो बाहर से आकर देख गए, वो कहते हाँ फलानी जगह फलानी है फलानी फलानी है। अरे महापुरुषों ने नहीं, उस मालिक की बात क्या कहो, घर के दर्शन किए हैं, वो कहते ये है ये ये है ये ये है, वो देख कर बयान करते हैं, उनकी जबान में कन्विक्शन है प्रतीत है। जो इंटेलेक्चुअल है वो कहते या ये है या वो है, तो जिसने देखा है वो दिखा भी सकता, उसको कौन देख सकता है, सन और दी फादर उसका बच्चा, बच्चे कौन है, ये सब अनुभवी पोत जाते चिल्ड्रन ऑफ लाइट, जब भी आते हैं दुनिया को रोशनी दे जाते। कहते ऐसे अनुभवी पुरुषों के बगैर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। और कहते गुरु बिन शुद्ध न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न, ये शुद्ध भी नहीं बनता, आत्मा का भी अनुभव नहीं कर सकता बनने से आलाद होकर, और न ही किसी चीज को प्राप्त कर सकता। तो अनुभवी पुरुष जब मिलेगा वो क्या करेगा, आपको थ्योरी ही नहीं समझाएगा बल्कि फर्स्ट में एक्सपीरियंस भी देगा कि कैसे तुम मंदिरों के घाट के ऊपर आ सकते हो, कैसी आपकी आंख खुलकर थोड़ी ज्योति का विकास कर सकते हो, उसकी पूंजी पहले दिन दे देते हैं, फिर रोज रोज बढ़ाने से बढ़ जाओ। तो कहते हैं क्या करें ऐसे लोग जिनको मनोजीवन मिला है और उनके अंदर उस प्रभु के पाने की ख्वाहिश प्रबल हुई है, उनके लिए पहला काम क्या करना होगा, जिन्होंने पाया है उनकी सोबत उसको गुरु कहते हैं। कहते वो कौन होता है गुरु, अब ये सवाल आ गया। देखिए परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अब परमात्मा ज्योति स्वरूप, उसकी ज्योति को कौन प्रकट कर सकता? उसका न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न कोई शरीक है, न सानी है, तो उसके साथ कौन मिलाएगा? यही कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी इंसानी पोल पर इजहार करके जीवों को अपने साथ जोड़ने की पूंजी देते। ये देखिए, ये घड़ी मेरे हाथ में है, घड़ी देख के मेरे हाथ पकड़ने वाले हैं, मगर हाथ में कौन काम कर रहा है मैं घड़ी नहीं देख रही मुझको। इसी तरह गॉड मैन से ही गॉड इन मैन, उसमें प्रगट है, हम में गुप्त है, फर्क यही है। वो गॉड इन मैन जो है वो तुमको ज्योति देता, और कोई नहीं मिला। ये आलमों का काम नहीं, पालमों का काम नहीं, ना ये स्पिरिचुअलिज्म है, याद रखो, ना ये स्पिरिचुअलिज्म है, ना ये हिप्नोटिज्म है, ना ही मेसमराइज्म है। ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, राइज अबाउ करने का, जिस जिसमानी से ऊपर लाकर हर कॉन्टेक्ट देने का। कौन देगा? वो खुद जिस गश में पड़ बैठा। तो कैसा गुरु हो, कैसे गोविंद हो, हरजी हो, नाम पर रामदास, आई एंड माई फादर आर वन, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। ये तारीफ का महापुरुष देते गए, पिता पूछते के रंगी ने, एक नहीं होता कई होते, मगर में मुझे ये कहा गया कि प्राइस इज अबव ऑल। मैंने कहा ठीक भाई, कोई सबूत आपके पास? कहने लगी से आई एंड माई फादर आर वन, ठीक है। मैंने उनको कहा अगर कोई और महात्मा यही लक्ष्य कहे तो। मैंने उनको ईस्ट से बिठाले जी, गुरु अर्जुन साहब की पिता पूत एक रंग लीने, पिता पूत रलकी निशान जी, मैं सुख तो निवाजा कई महात्मा के कलाम, तो मैं क्या, आप क्या कहोगे? जिसके अंतर वो अनुभव, इसका अनुभव किया वो सब एक है, ये रिसर्च फॉर ऑल। तो जिसकी आंख खुली है वही खोल सकता है ना। तो कैसा गुरु हो, कैसे गोविंद हो, ही मस्ट बी गॉड इन मैन। परमात्मा ही किसी पोल पर बैठ कर तुमको परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। बात तो यही, तो बड़े प्यार से कहते हैं क्या करो, ऐसे गुरु को पकड़ो जो गोविंद का रूप हो, और उसको क्या करो, कैसे सलाइए भाई, उसके चरणों में बैठो, उसकी सलाहना करो, उसकी अपने दिल दिमाग को मन तन हृदय धार मन करके और तन करके प्यार और प्रेम से उसके साथ जुड़ो। याद देखो, प्रेम एक ऐसी चीज है, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम। हमारी आत्मा उसकी आंख है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम ही है। जैसे गुरु साहब ने कहा, सब देखों का जिक्र करते हुए मुख्तलिफों का कहते हैं क्या, हाथ हूँ सुन ले सवे, जिन प्रेम की हो तिन ही प्र पायो। क्या भाइयों, आप मुख्तलिफ समाजों में हो, मुबारक हो। मैं तुमको एक सच की बात कहता हूँ, क्या कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। डोंट लव ओनली दे कैन नो गॉड, यही क्राइस्ट ने कहा, डोज डू नॉट नो लव कैन नो गॉड, लव इन ऑल थिंग कैन बी एडेड अनटू यू। तो कहते क्या करो, परमात्मा को हमने देखा नहीं, बड़ी मोटी बात, जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे? प्यार याद रखो, ग्रंथों के पोथियों के पढ़ने से शौक बनेगा, पाने की तड़प बनेगी, बिना और शोध बनेगी, दो आंसू बहेंगे, मगर प्यार नहीं। प्यार उसी का होगा जिसको देखा है, जिसका कुछ रस मिला। हर को एक आदमी ने आम खाया, एक आदमी के भी आम देखा ही नहीं, जिसने खाया उसका रस मिला, जब भी नाम, क्योंकि रस लिया हुआ है ना, तो जिसने आम देखा ही नहीं फिर वो क्या कहेगा? तो प्यार होगा उसी का जिसको देखा है, जिसके कॉन्टेक्ट में आया। बाहरी यांत्रिक जो ऐसा कॉम्पिटेंट पुरुष है, वो बाहर भी और अंतर भी, खाए नहीं देखा तो भी अपील हो जाता है। आपको पता हो ईश्वर व्रत में ऐसी स्थिति मौजूद है, मुझे जाने का इतफाक हुआ है। वो कहते कई साल पहले सूप आया करता, वो गॉड पावर तो जानती है ना, किस पोल पर इजहार करती, वो अंतर में अपील होती है, जब देखा तो उसका प्यार बढ़ता। बिन देखे कैसे को ध्यान, जिसको देखेंगे उसका प्यार कैसे? तो प्यार कैसे बनेगा? जिसका रस मिला हो, जिसका कॉन्टेक्ट मिला हो। अब रथ देने कॉन्टेक्ट देने वाला कौन है, वही गॉड इन मैन। वो तुमको उसके साथ जोड़ता है, जब जोड़ता है तो उसका प्यार बनता है, रथ मिलता है तो उसका प्यार बनता है, जब प्यार बना तो इज ओवर फ्लोइंग पैरा सुगुर भरे प्रेम रस रंग उसके क्या साथ के संग। वो प्रभु के प्रेम और विष्णु के प्रेम के ओवर फ्लोइंग प्याले होते हैं, जो उस मंदिर में आ जाते हैं उनको वही रंग मिल जाता है। ये रंग कहाँ से मिलता है फिर वही सवाल, महापित्र साध का संग जिस पेतृ लागा हरिणा। साधु की संगत महापित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से, रिसेप्टिव होने से, राड़ा दिल दिल को राह बनने से वो रंग रेडिएट होता है, उसका ऐसा ले जाता है नजदीक और से। दूरी का सवाल नहीं है, यहाँ तक कबीर साहब ने कहा है कि गुरु साहब समुद्रों के पास रहता हो, किसी तरफ रहता हो, दीनी सुध पठा। गुरु साहब समुद्रों के पास रहता हो, शिष्य तरफ सिर्फ डायरेक्ट करो सोल को, रिसेप्टिव वहीं से बरकत मिलती है। क्यों? तो वो तुम्हारी आगे ही आत्मा की आत्मा है, सब एक पोल पर इजहार कर रही है। आप देखो मैं यहाँ हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, मुस्लिम मुल्कों में जो इस उकाज को कम्युनिकेट कर लो, ये उसका काम नहीं करती, वो पावर काम करती है जो हर जाए, तो वहाँ उनको एक्सपीरियंस मिलता है। तो गुरु दूर करने हुआ ना, इसमें शक नहीं कि पर्सनल फिजिकल अटेंडेंस जो है उस मंदिर में खास असर रखती है, पर हजारों मीलों पर भी अगर तुम रिसेप्टिव करो तो वही असर मिलते। तो कहते क्या करो, जो मनुष्य पाकर प्रभु को पाना चाहते हैं उनको मिलो जिन्होंने पाया। वो कैसे हो? वो गोविंद का रूप हो, गॉड इन मैन, गॉड मैन, गॉड प्लस मैन, परमात्मा जमा इंसान। अगर तुम उससे मिल गए तो गॉड इन मैन से मिलेगा नहीं। एक बल्ब है रोशनी का, उसमें बिजली चमक रही, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी स्ट्रांग, वो जो लाइट है तुमको खींचती है, शीशा मालूम भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं होता। इसकी तरह जो गॉड मैन है उसके अंदर वो परमात्मा इजहार कर रहा है, वो अट्रैक्शन रेडिएशन करती है सोल को, सोल आत्मा को आ रही है, वो खिंचा सकता। तो वो रेडिएशन जब मिलती है तो जिसम जिसमानी का ख्याल नहीं रहता। कहते क्या करो, मन तन हृदय प्यार, मन करके और तन करके प्यार और प्रेम से उसको हृदय मिलता। अगर वो गॉड मैन है, तुम्हारे अंदर गॉड मैन आ जाए तो गॉड आ गया कि नहीं? सेंट पॉल ने कहा इट इज आई डिड नॉट नो बट क्राइस्ट रिजेक्टेड। क्राइस्ट कौन था? क्राइस्ट ने कहा आई कैन नेवर लीव यू नॉट फॉर टेक इट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक। जब मैं अमेरिका में गया था लोगों ने सवाल किया कि मैंने क्राइस्ट टीचर ने, मैंने उनको कहा भाई आई हैव लेफ्ट यू, क्या उसने कभी तुमको छोड़ा भी है? क्योंकि क्राइस्ट ने लव कहे आई कैन नेवर लीव यू नॉट फॉर टेक इट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो क्राइस्ट जीसस के पोल पर गॉड पर काम कर रही थी, वो कभी मरती नहीं, जो एक बार जिसको अपनी चाहते उसको कभी छोड़ती नहीं। बात समझ रहा हूँ, तो गुरु के अंदर वो गॉड पावर काम करती है उसको कहते हैं क्राइस्ट। एक बार जिसको नाम दे उसको वो कभी नहीं छोड़ता, छोड़ भी जाए तो भी वो नहीं छोड़ती। ये एक ऐसा बीज है जो बीजा गया जिसको काल और माया भी जला नहीं सकती। तो गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं आपको पता ये अपने गुरु के मतलब क्या कहा करते थे? इनके गुरु थे रामदास, उनका नाम था परमात्मा से हरियो नाम पर रामदास। ये हरि बैठा है, रामदास नहीं हरि बैठा, प्रभु ही बैठा है, मौला आदमी बनाया। कहते प्यार और प्रेम से उसके हृदय में धारण करो, उसके हृदय में धारण करना प्रभु का धारण करना। इसलिए कहा हर की पूजा सतगुरु पूजो कर कृपा नाम चलावे। अगर हरि की पूजा करना चाहते हो, हरि को तो आपने देखा नहीं ना, जो हरि का रूप बन चुका है उसको बताओ, ये हरि को बताना। तो बड़े प्यार से समझे ये पहला जीना है। कहते इससे क्या नतीजा होगा, इससे क्या नतीजा होगा? अगर हम किसी गार्डमैन को अपने हृदय में बता लें, हमारे अंदर वो प्रत्यक्ष हो जाए, वो गॉड इन मैन है, तो गॉड तुम्हारे अंदर आ गया कि नहीं? इसको तो हम देख सकते हैं ना। देखो उस प्रभु को कोई पुण्य आत्मा आदमी जो इनके घाट के आलाय से पाप होगा वही देख सकता है, और एक गार्ड मैन को तो पापी से पापी भी देख सकता, डाकू भी देख सकता। चलो तवज्जो ऊपर करो, उस तरफ रिसेप्टिव बनो, तो उसके अंदर जो गार्ड पावर वो तुमको अट्रैक्ट करेगी। यहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता, گل گل گلے دیوار پہ چادر نہیں ہے جہاں پر لگن نہیں سمجھے, جہاں پر کچھ کشش والی چیز حسن نہیں وہاں کشش بھی دے. کبھی آپ نے دیکھا ہو, معاف کرنا, دیوار پر پھول اترے ہوئے ہوں اور بلبل اس پر چاہ چاہتی ہو؟ کبھی نہیں. سچ پر پھولوں پر تو چاہ چاہے گی. ارے کتنی اچھی فوٹو بھی بنا رہا ہوں, پھر بھی جو سچ میں جس کی فوٹو ہوتی ہے آنکھ سے تو ریڈیشن ہوتی ہے نا, یہ فرق ہے بڑا بھائی. تو اس کے اندر کھینچنے والی چیز کون ہے؟ وہ گاڈ پاور ہے, پرماتما, کرائسٹ پاور کہو, گاڈ پاور کہو, گرو پاور کہو, اس کے اندر وہ پربھو کی ڈیوٹی اس میں ریڈیٹ کرتی ہے. تو جب تن من دھن سے پیار سے اس کو ہردے میں بتاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا آگے بتاتے ہیں کیا ہوگا.
بھائی
وہ مالک جو لافانی ہے, انچینجبل پرماننس, لا تغیر لا تبدل ہستی ہے, وہ ہردے میں پردے پکڑ. کہتے سب کرمیوں کا سار یہی ہے, اٹ از اے کریم آف آل ایکشن. پربھو کا پرگٹ ہونا یہ پھل ہے, فروٹ ہے. جتنے سادھن آپ کرتے ہو, پوجا کرو, پاٹ کرو, باہر کے جتنے یہ وہ ہے, جب تک وہ اندر پرگٹ نہ ہو, معاف کرنا یہ بندنی کا کارن. دس کی قیمت اس کے پھل سے ہوتی ہے, اٹ از نون بائی دی فروٹ اٹ بیئرز. اگر منوش جی پا کر آپ نے پربھو کو انتر میں پرگٹ کر لیا, وہ کیسے پر جس کو دیکھا نہیں اس کا دھیان کیسے, وہ گاڈ مین میں ہزار ہو کر آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. پہلے پاندے کی طرح, سور کی طرح پڑھاتا ہے, اندر بھی کرتا ہے, دو آنسو بھی باہر, پھر کہتے چلو اوپر, ان سے اوپر جانے کا کچھ کیپیٹل پونجی دے دیتا ہے. جب انتر جاتے ہو سامنے آ کر ہوتا باتیں کرتا, پھر اوپر جا کر آپ بھی لایا کرتا ہے اور اس کو بھی لایا کر دیتا ہے. جیسے اسٹیم ہو وہ پانی بن جاتی ہے, پانی برف بن جاتی ہے, اب برف اسٹیم ہی ہے. گاڈ مین کے اندر جو پاور ہے وہ گرو کہتے ہیں. جب ہائر کانٹیکٹ جسم جسمانیت سے اوپر آتی ہے اس کو کہتے ہیں ریجنگ فارم آف دی ماسٹر گردیو لائٹ. جب آگے چلتی ہے تو وہی سدگر یا بھرپورے کو پرماتما کو کہتے کیا کہ یہ سب کرمیوں کا سار ہے. اگر تم کیا کرو, ایسا گرو جو گاڈ مین ہے, گرو سدگر کا جو سکھ کا ہے, جو گرو جو ست کا سوروپ ہے, اگر اس کو اپنے ہردے میں دھارن کر لو, پربھو تمہارے گٹ میں آ جائے, پربھو پرگٹ ہو جائے گا, تمہارے سب کرم و دھرموں کا پھل مل جائے گا. یہ کرمی آر ہے, اس لیے کریم ابول ہے. کتنا آسان طریقہ, جس کو دیکھا کیا, جس کو دیکھا اس کو دھیان. اگر وہ سچ میں گاڈ مین ہے, ایز یو تھنک سو یو بیکم, جس کا چنتن کرو گے اس کا روح بنو. تو بڑے پیار سے سمجھا رہے, دو لائنوں میں ڈائجسٹ دے دیا. سوامی جی مہاراج فرماتے ہیں یہ اپدیش کن لوگوں کو دیا جاتا ہے جو پربھو کو اسی جنم میں پانا چاہتے ہیں. نہیں تو عام یہ کہا جاتا ہے تین جنموں میں سدھی ہوگی. ارے اپنے ہی تو کیا پتا, مویا ہوئے جب مکت دے ہوگے تب مکت نہ جانو گے. اب مر کر مکتی بھی مل جائے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دی بش. اس لیے مولانا روح صاحب نے یہ کہا کہ اگر تم کسی ولی اللہ کے نزدیک آ گئے سمجھو تم پربھو کے نزدیک آ گئے, جب تم کسی ولی اللہ سے دور ہو گئے سمجھو پربھو سے دور ہو گئے. ایک سوئچ ہے, وہ پاور ہاؤس سے جڑا پڑا ہے. اگر آپ پاور ہاؤس کے پاس نہیں پہنچے, سوئچ کے پاس پہنچے, آپ پاور ہاؤس کے نزدیک آ گئے کہ نہیں؟ اگر سوئچ سے دور ہو گئے پاور ہاؤس سے دور ہو گئے. تو کیسے اگر تم اس کو گرو کو کہ گرو کا دھیان کر پیارے بنا اس کے نہیں چھوڑ. تو گرو کا دھیان سچ مچ جو ہے وہ پرماتما ہی کا دھیان ہے. جس جسمانی بھول جائے گی گرو کو مانس جانتے جنم جنم ہوئے سان. اگر تم کو انسان سمجھتے ہو تو تم کو بھی جنوں میں جانا پڑے, وہ انسان نہیں. اگر انسان ہے تم کو انسانیت دے گا, اگر گارڈ ان مین ہے تو گارڈ اٹھ دے گا. بات تو یہ تھوڑے لفظوں کی, یہ سب کرمیوں کا, سب جپوں تپوں کا, یہ دو کا, سب کا سار یہی کہ گارڈ مین کو ہردے میں بتا وہ پربھو تمہارے شاید میں پرگٹ ہو جائے گا. گرو مداس صاحب فرماتے ہیں ہر سچا گر بھکتی پائیے, हरी चर्चा गुरु भक्ति से मिलता, इसमें क्या महसूस होता? महापुरुष ने ध्यान किया, फरमाते हैं चुना पुरुष फजा है सीना दोष, सीने की फजा मेरी इतनी अपने प्रीतम से भर गई कि ख्याल है खेस गुम शुदा जमीन कि अपने आपे का ख्याल नहीं हो गया, मैं हूँ जब वो इसे लाए नाच न आई बट क्राई श्रीजन की। ये प्रेम का खास है, दो से एक रूप हो, मैं तू का सवाल न रहना, प्रेम गली अतरी था मैं दो न समा, प्रेम की गली बड़ी भीड़ी है तंग है, इसमें दो नहीं रह सकते, गुरु और शिष्य भी एक होकर रहे, ये तरीका है प्रभु के पाने का, और ये सबका सार है, सब कर्मियों का, पूजा करो पाठ करो जिन्हें अपरा विद्या के साधन है, ये जमीन की तैयारी है, प्रभु का पाना कुछ और है, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, जिसको मिला नहीं रस नहीं मिला उसका प्यार कैसे, जब वो आप ही किसी हृदय में प्रकट होकर जो हम अभी गुप्त है अपनी तरफ रूह को खेल जाता है, वो रव जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी बहनें गुम हो चुकी है ढूंढने के लिए, गांव गांव में फिरता है, शहर शहरों में फिरता है, कभी प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी माली खुद पानी देने को आ जाता है, अरे भाई किसी न किसी शुरू से उसको जोड़ने का सामान हो जाता है, जिनको जिनके अंदर ये ख्वाहिश प्रबल बन गया। हाँ जी,
गुरु गोविंद सलाहिए भाई मन तन हृदय धार, साचा साहेब मन वस भाई ए आ करणी तार, जित तन नाम ना उपजे, जित तन नाम ना उपजे भाई से तन होए खार,
केवल जीव का तन पाया है और प्रभु पंद्रह नहीं हुआ, कैसे ये जिसम का पाना बर्बाद हो, ये मिट्टी में मिल जाएगा, दस दवा से दस को दस लीटर, मनो जिन भागों से गोल्ड न पति उनकी मिली थी इस काम के हासिल करने के लिए, वो क्या था, गॉड मैन को दिल के अंदर धारण कर लो, बड़ी मोटी बात, थोड़े लोग ये सब कर्मियों का सार है कि अगर मनुष्य इन पाकर वो प्रगट नहीं हुआ जन्म बर्बाद कर, पौड़ी छुटकी सरहा अपना जीत हुआ, एक बार मनुष्य की पौड़ी हाथों से निकल गई, ये मनुष्य बर्बाद किया, फिर याद नहीं कब मनुष्य मिले, फिर तुम ये काम करो,
साध संगत को वारिया पाई, जिन एक ओंकार आधार,
जैसे हम साधु संग की संगत पर कुर्बान जाते हैं, साधु संग, साधु किसको कहते हैं, साध की तारीफ की है, साध प्रभु भिन्न भेद न भाई, साधु और प्रभु में कोई भिन्न भेद नहीं, आई एंड माई फादर भगवान सौ हम भेद न का ही दिए, ये ऐसों की संगत पर कैसे हम कुर्बान जाते हैं, कहते क्यों कि उनके अंदर वो एक ओंकार जो है उसका जीवन का आधार बन चुका, प्रकट हो चुका है, हमारे अंदर भी है वही ओवर सेल्फ का हो मगर गुप्त है, हमें अपने आप की होश नहीं, क्योंकि उसका जानना न इंद्रियों से हो सकता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से, आत्मा ने उसका अनुभव करना है, कब करेगी, जब ये आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर अपने आप की होश आएगी, फिर आत्मा का वो सेल्फ से कॉन्टेक्ट होगा, कहते ऐसी पुरुषों की साधुओं की संगत पर हम कुर्बान हैं जिनके अंदर वो प्रगट हो चुका है, बाहर वो प्रगट कैसे होता है, सदगुरु दिलाए एक एका, कोई सत का स्वरूप ही तुमको उसका अनुभव दे सकता है, बिन सदगुरु नाम न पाया जाए सिद्ध साधक रहे बिना, बगैर सत से उपस्थित है वो परिपूर्ण परमात्मा अनुभव में नहीं आता है, सिद्ध साधक लोग जन्म हजारों साल मेहनत कर करके हार,
सोई सच आराधना भाई जिसते सब किस हो, सावन
पीछे को रूहों के अवतार हुआ है। दुनिया में करतार का अवतार हुआ है। अब तक जो निराकार था साकार हुआ है। सावन की किरण चमक रही है त्रिपाल में, सावन की किरण चमक रही है त्रिपाल में। त्रिपाल हुआ सावन, सावन त्रिपाल हुआ है। अब तक जो निराकार था साकार हुआ है।
मैं अपनी हकीकत तो पेश कर चुका हूँ, ये सब उनकी है।
जलवागरी की ये खुशी जलवानुमा को, दीदार से खुद तालिब दीदार हुआ है। दीदार से खुद तालिब दीदार हुआ है। दुनिया में करतार का अवतार हुआ है। अब तक जो निराकार था साकार। प्राणी मन के मैल को धो, ओ प्राणी मन के मैल को धो। सत का साबुन जत का पटड़ा, सत का साबुन जत का पटड़ा। मती के नीर डुबो, सुमती के नीर डुबो। हरी है शीतल जग है ताता, गुरु है शीतल जग है ताता। ताता नीर समो वो प्राणी, ताता नीर समो ओ प्राणी। मन के मैल को धो, मन के मैल को धो ओ प्राणी, मन के मैल को धो। मन है तेरी वसुधा सागरी, मन है तेरी वसुधा सागरी। इसको राख या खो, इसको राख या खो। जो मन का मल धोया नहीं, जो मन का मल धोया नहीं। बैठ कर्म करो ओ प्राणी, बैठ कर्म करो ओ प्राणी। मन के मैल को धो, मन के मैल को धो ओ प्राणी, मन के मैल को धो। काम बहुत है समय है थोड़ा, काम बहुत है समय है थोड़ा। चाहे जाग या सो, चाहे जाग या सो। काम बहुत है समय है थोड़ा, काम बहुत है समय है थोड़ा। चाहे जाग या सो, चैन क्या जो हो मन विश्वासा। होनी होए तो ओ प्राणी, मन के मैल को धो। सत का साबन जत का पटड़ा, सुमति के नीर डुबो ओ मनुआ।
जान के मैं
इंसान को अपने आप की तरफ कुछ नजर मारनी चाहिए। बाहर तो अब तक ये नजर मारता ही रहा, बाहर बहुत कुछ इसमें तरक्की भी कर ली, मगर सब तरक्की के करने के बावजूद भी ये अभी दुखी है। सवाल तो ये है, रोना तो सिर्फ ये है कि हम सुखी कैसे हो। वो सुख की खान कहाँ पर है किसी को मालूम करना था, हम बाहर उठी ही तलाश करते रहे, वो चीज नहीं मिली। संतों ने इसलिए हमें तवज्जो दिलाई कि वो खान जिनको तुम पाना चाहते हो तुम्हारे अंतर में, वो अंतर में कौन है? इंसान। तीन चीजें ये रखता है, ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है। अभी तक हम इसको जिस्म और जिस्मानी तालुकात और बाहरी फोर्सेज ऑफ नेचर और बुद्धि इंटेलेक्चुअल वे में उसको तलाश करते रहे, मगर अभी तक दुखी नहीं हुए, सुखी नहीं हुए। दुखी बढ़ रहा है बावजूद इतनी तरक्कियों के भी सब भयभीत हो गए। हाय माओ, अभी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, एटमवार हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई तुम अपनी आप की तरफ नजर मारो, तुम्हारी कल्याण हो। अब सवाल ये आता है कि अपना आप हमारा क्या सवाल? चीज वही है, इसमें शक नहीं, जो सब महापुरुष ने ध्यान किया है, सिर्फ उसका तर्ज ध्यान है जो आपके सामने अभी रखा जाएगा कि इंसान के अंतर एक चेतनता कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन से ये जड़ता जो है ये कॉन्शियसनेस में आई, कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस में तब्दील हुई, सेल्फ कॉन्शियसनेस को पाकर सुपर कॉन्शियसनेस में जाना। बात हुई थोड़े लफ्जों, कॉन्शियसनेस हुई, पहले लाइफ बनी, लाइफ से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस, ये है हमारे सामने। हमने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो दी, जो इसके आधार पर सब कुछ हो रहा है उसके तो बड़े बाहर माहिर बने और कॉन्शियसनेस को पार कर दी, अपने आप की कॉन्शियसनेस दी। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहो, सेल्फ अवेयरनेस कहो, अपने आप में जागृति कहो, ये नहीं, इस तरफ तो जो नहीं, ये क्या? साइंटिस्ट से मैंने सवाल किया था, अमेरिका से, हैव यू बीन एबल टू क्रिएट एन अंश ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या तुम कौन चेतनता को पैदा कर सकते हो? क्या वे करने तो परिवार कहो, रिलीजन कहो, इट इज अ रिसर्च विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस चेतनता को जो तुम हो ना, आंखें बंद करते हो, खोलो, अब अवेयरनेस को जागृति महसूस करते हो ना, वो तुम हो। उसके आधार पर ये इंद्रिय भी काम कर रहे हैं, मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है, इसकी तरफ तो हमने बहुत कुछ जानना, जिसके आधार पर ये हो रहा है उसकी तरफ लोग। तो महापुरुष दुनिया में आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर एक छुट्टी है, छुट्टी वेट पर कॉन्शियसनेस, वो तुम दैट यू आर। ये एक मोटर फोर्स है, कहो चीफ मोटर फोर्स कॉग्निशन के लिए। कॉग्निशन आप समझते, किसी चीज को अंतर में जागृति एहसास में आए, देखने वाले, अनुभव करने वाले बने, वो कॉग्निशन के पाने के लिए एक बड़ी चीफ मोटर फोर्स है, कहो जो शुद्ध। और ये एक हथियार है, कहो सेल्फ अवेयरनेस का वेपन, जो हम है ना, जागृति मजबूत बारीक है मगर समझे कैसे समझे, सेल्फ अवेयरनेस के एक हथियार है जानने के लिए, जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक बनी, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस बनी। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। गॉड नॉलेज एक अवेयरनेस है जो अनुभव में आती, वो मनिंदों के घाट का सवाल नहीं, वो संतों की तालीम मनिंदों के घाट की नहीं, न बुद्धि की। इसलिए ये कहा कि सेल्फ अवेयरनेस को पाने के लिए अगर तुम इस जागृति वेकफुलनेस, ये क्या है, ये सवाल पैदा होता है ना, ये सेल्फ इंक्वायरी के लिए एक बड़ी भारी जबरदस्त चीज वेपन है जिससे हम उसका अनुभव पा सकते। ये एक ऐसी चीज है जो कि न बदलने वाली है, न जन्म में है न मरने है। वो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी एक ईगो का इजहार है, जिसकी कॉन्शियसनेस है वो असल चीज है। तो उसके पाने के लिए वो न बदलती है और अगर दुनिया रहे बदले कुछ सब वो वैसी की वैसी है। उसका अनुभव करना है, ये है परमार्थ। संतों की तालीम, दुनिया की तालीम का बेसिस क्या है? फीलिंग, फीलिंग ऐसा था। परमात्मा परिपूर्ण है, ये तुम्हारा अपना फीलिंग बनाया हुआ एक सूक्ष्म तत्व का ध्यान है। ये जो बात जिक्र किया ये तो नहीं, उसमें आकर इमोशंस में आ गए, वो भी तुम्हारा अपने ही बेसिस बना हुआ फीलिंग के आधार पर है, या बहुत बुद्धि के आधार पर आपने बड़े नतीजे निकाले, इन्फ्रेंस निकाले हैं, वो भी तुम्हारी बुद्धि का ही फैसला। किसी चीज पर अराइव एट करते हो, मैं पाई तो नहीं, इसलिए हम भी पूछ कहते हैं कि इन्फ्रेंसिंग बिरोल शब्द क्या है? प्लेन जो सुपर कॉन्शियस है, लड़की बताइए आप समझ रहे, मजबूत वो बारीक है मत चीज यही। तो उस सुपर कॉन्शियसनेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनेगी, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के आगे एक और कदम है सुपर कॉन्शियसनेस। आम महात्माओं ने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक भी बयान किया, नेचर नेचर तक बयान किया, नेचर के पार बयान नहीं किया। तो सुपर कॉन्शियसनेस संतों का आदर्श है। गुरु नानक साहब ने फरमाया, सत लोग के ऊपर धावे, अलख अगम की सब गत पावे, जिसके ऊपर संतन धाम नानक दास या पिता। हम वहां के रहने वाले हैं नहीं, ये स्वामी जी महाराज ने इसका जिक्र किया, अलख अगम नामी स्वामी करके जाते। तो ये है हमारा आदर्श। वो किसे इस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं? मन बुद्धि इंद्रियों के घाट पर रहकर सारी उम्र रहो नहीं जाओ। इनके तल रखने वाले जितने साधन हैं वो सारे साधन तुमको बार बार दुनिया में लाएंगे। तो सब महापुरुष ने कहा, यू कैन प्रे गॉड विद हैंड बट विद स्पिरिट। ये जो स्पिरिट तुम्हें अवेयरनेस जागृति है नहीं, इससे काम बनना, उसकी तरफ हमारी कभी तवज्जो नहीं। मैं इसलिए क्यों पेश हूं, मुझे एक चीज मिली समझ आई हजूर के चरणों से, वो मैं खोल कर पेश कर रहा हूं। सब टर्मिनोलॉजी इस्लाम को छोड़ छाड़ कर जो आम साहब बात में आ सकती है वो पेश कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं आप साहब भाई कच्चे जो मुझे समझ आई आपके सामने रख दू। तो इसलिए मैं याद कर रहा था इस, अब इसको कैसे कर सकते, वट इज द नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस सवाल है। कॉन्शियसनेस तो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसमें थोड़ा ईगो, यही सेल्फ है हमारी ईगो का। जब सेल्फ कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनेगी, उसमें लॉन से अपना पिता पूत देखे रंग ली, आई एम माई फादर वाट, पिता पूत रंग की शान। सब महापुरुष ने लिखा, यहां तक इशारा दिया, मन ये है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप कई भाई सेल्फ रियलाइज करो भाई अपने आप को, भाई ये ठीक है, ये भी गोल नहीं, याद सेल्फ रियलाइजेशन है। जिस ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है, जैसे कतरा पानी में मिल जाता है, जैसे जल में जलाए कटाना जो तक ज्योति जोत समाना, जैसे पानी दरिया में मिलकर दरिया का रूप हो जाता है, जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर गोले का रूप बन जाता है, आग का रूप बन जाता है, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस लूज कर जाता है। ये है इशारे जो आम पुरुषों ने दिए हैं। मगर ये याद रखो, इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो विश्व, इसे कन्यामा करिए विश्व जागृति, सारा विश्व मुझ में, मैं सब, ये डिग्री बाय डिग्री जाता है, ऑल एटवंस नहीं, हमें बात हो जाता है, बाय डिग्री ज्वाइन करता है और कैसे मिलता है बाई पर्सनैलिटी। इसकी अलबे कहां से शुरू होती है, जब हम अपनी आत्म मन इंद्र से आजाद करें तब दुनिया के जितने उपदेश हैं माफ करना, ये अपरा विद्या लगाएगा। कुछ सेल्फ कॉन्शियसनेस आते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का इशारा देकर वही रह जाते हैं। अरे संत कहते आते सुपर कॉन्शियसनेस में डिग्री दर्जे बदल, तो इसकी अलग एक हंसी शुरू होती है, वेद वर्ल्ड फिलासफी एंडर दिलिजिस्टा, जहां दिल के सिर से खत्म हो जाते हैं वहां पर इसकी अलग शुरू होती है, एबीसी। अब आप समझे संतों का मार या परा विद्या क्या, और आम दुनिया जिन में लग रही है वो क्या, वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल है, उनकी भी जरूरत है, एलिमेंट्री स्टेप है। लड़का स्कूल में जाता है, सख्ती कलम द्वार ले जाता है, उसको जरूरी है, बसारी वो तख्ती कसम द्वार पर नहीं लेता, फिर वो किताब में बोलता। मैं अपनी इग्नोरेंस का जिक्र करूं, मैं तीसरी की बात में पढ़ा करता था, मैं ये समझता था किताब ही से पढ़कर इंसान बातें कर सुना सकता। तो एक लेक्चरार आए किसी अखबार के एडिटर थे, वो बोलने लगे, मैं उनकी आंखों में देखूंगी कहां से बोलता। अभी तक ये ख्याल मेरा बड़ा विवेक है, ये बोलता कहां से, बड़ा वंडर करता था। अब मैं देखती हूँ कोई बड़ी बात नहीं, अरे भाई जहां तुम शुरू हो ठीक है, जो मंदिरों में पूजा करते हो वो भी ठीक है, जो नाचते गाते बताते हो वो भी ठीक है, मगर वो इंद्रियों के घाट से तल्लब रखते, ये पहला ही कदम है, आगे कदम उठाओ, इससे जन्म मरण नहीं खत्म हो गया। और मैं ये बात कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं पेश कर रहा, सब मेरे साथ ग्रंथ होती यही कहते कि अपरा विद्या से जमीन की तैयारी है, मुक्ति नहीं। मुक्ति का रास्ता कहां से शुरू होता है, सेल्फ एनालिसिस से, जब आपकी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तो तुम देखो मैं जिस्म नहीं, जब चेतन अलग हो जाए। बुद्धि के लिहाज से तो हम कहते हैं मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं जिस्म नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं बुद्धि नहीं, अरे लेकिन प्रैक्टिकल भी हुआ तो अनबई पुष्टि बढ़ाई किस बात में है कि आपको बिठा कर पहले दिन इससे ऊपर लाता, सेल्फ एनालिसिस पर्सनल एक्सपीरियंस देता, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा है, साधो सौ सदगुरुमय भाव, ये उसकी बढ़ाई। इंटेलेक्चुअल टास्क देना नहीं, हाँ इसका ये मतलब कि इंटेलेक्चुअल वो प्रूव नहीं हो सकती, हो सकती है, मगर जब तक इसका एक्सपीरियंस ना हो। हमने मान लिया कि हम जिस्म नहीं, हमने ये भी माना हम इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, अरे फिर तुम कौन हो, कभी ख्याल किया, सारी उम्र साधन करते रहे मन इंद्रियों के घाट के, वही के वही बैठे हैं जहां आगे थे। तो अब मेरी पोषण की तालीम क्या है कि तुम सेल्फ एनालिसिस से शुरू हो, उनकी पहले दिन यहां से तालीम शुरू होती है, पहले दिन कॉलेज में बैठा दिया जाता है, पढ़ा हो अनपढ़ हो, पढ़े ने भी समझकर फिर वही कदम उठाना है जो अनपढ़ ने उठाना, बल्कि अनपढ़ माफ करना बड़े जल्दी तरक्की कर जाते हैं क्योंकि बुद्धि का फैलाव ज्यादा नहीं। वेद भगवान क्या कहता, जो अविद्या में है वो मर कर निखार लोगों में जाएंगे, जो विद्या में रहते हैं वो निखार लोगों में जाएंगे। रीजनिंग इज दी हेल्प, मैं आपके सामने एक बात पेश कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने के लिए, ये समझने के लिए है, समझ कर जिस चीज को समझा है कि ये चीज सेल्फ कॉन्शियसनेस से शुरू होगी, बस सेल्फ कॉन्शियसनेस से जब तक हमको एक्सपीरियंस न मिले इंद्रियों के घाट के ऊपर लाकर, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, इसकी अलग में नहीं शुरू होती। अपने आप इंद्रियों के घाट के ऊपर नहीं जा सकते, आप कोई जा सकता है तो बड़ी खुशी से जा, अंधे को दो आंखे चाहिए, न जा सको तो किसी की मदद दे, जो तुमको इसमें एक्सपीरियंस दे सकता है, फर्स्ट अलग एबीसी पढ़ा सकता है इंद्रियों के घाट के ऊपर, उसका नाम साधु संत और महात्मा, जाओ तलाश करो जहां भी, ऐसी पुरुषों की तासी वेदों सात सौ ग्रंथों को ही निदाई। तो यहाँ से इसको हमने बनाना है, शुरू कहाँ से होगा? सेल्फ एनालिसिस से हो। सेल्फ एनालिसिस का मजमून जो इंद्रियों के घाट का आगे रूप बने बैठे हैं, वो इंद्रियों के घाट से ऐसे साधन करने से जिनका तलब इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जाए, सवाल आप खंडित नहीं समझ जाते। यहाँ वे आपको होने की जरूरत है। कई बार हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हमें वो सीरियस अनुभव में आ भी जाता है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि ये है क्या। कई भाई आते हैं मुझे मिलने का इत्तेफाक, वो कहते हैं हम खड़े होते हैं आंखों सामने रोशनी आती है, वो बेचारे आंखों का इलाज करते करते कई के ऐसे सवाल है कि मन इंद्र खड़े हो जाते, चलते चलते सीधे रिएक्शन होते हैं, इलाज कर करके मरने को दिमाग का करता है, को आंखों का करता है, पर बीमारी जो वो समझ में नहीं आती। सीधे संस्कार आ भी जाते हैं क्योंकि मालूम नहीं होता ये बात क्या है, वो बेचारे घबराते हैं। कई भाई ऐसे मिलते हैं हमें भाई दिल्ली सुना के मालूम कानों में क्या हो गया, कानों का इलाज करते हैं। तो हम जो कुछ हैं अपना पिछला संस्कार बाद वक्त आ भी जाता है, मगर आगे का पता नहीं क्या करें, तो वहां भी किसी की फिर जरूरत पड़ी। तो गुरु अमरदास जी साहब ने यह कहा, फिर किराए गुरुमुखवत पाओ। गुरु अमरदास जी को 70-72 साल की तलाश तक रही, तलाश रही। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, इस बात की समझ आई, कहा भाई अपने आप चलते रहो, आखिर किताबें पढ़कर भी थोड़ा बहुत शुरू करोगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बनेगी, फिर भागोगे महाराज क्या करें, किताबें तो बोलती नहीं है। किताबों में जिक्र है, हमारे दिल में जिनको पोछने की नीयत है उसमें इशारे हैं, मगर ये नहीं मालूम कहाँ दिए हैं। कुरान वही पोछ जाने भाई ये बात, या मैं आपको को नहीं थी तो नहीं पेशता रहा, वो इन ग्रंथों पोथियों में जो पढ़ा है उसकी समझ हजूर के चरणों में आई, वो पेश कर रहा। तो इसके लिए अगर इसकी तालीम कहाँ से शुरू, आप समझते हैं संतों की तालीम क्या, ये ना मन की है, नींदों के घाट की है, न प्राणों की है। इसका सारा कोर्स कहो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता, कॉन्शियसनेस, हम चेतन कॉन्शियस एंटिटी हैं, मन इंद्रियों के घाट पर गिरे पड़े, वो जो चेतनता है नहीं, वो जन्म मन से रहते, उसको जाने तो फिर ओवर कॉन्शियसनेस कुछ। इसलिए कहा सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ नॉलेज रिसीव गॉड नॉलेज, सेल्फ नॉलेज से गॉड नॉलेज शुरू होता, जाना जा सकता अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ, उसका मतलब ये कौ नान बिना पाची ने जितनी हम भ्रम की का। अब आप डिस्टेंस देखते हैं, योगियों ने भी जिन्होंने प्राणों के सिस्टम को साथ लिया है, उन्होंने भी प्राणों का कुंभ करके फिर ऊपर जाकर वही मारे, वो मुश्किल था, फिर जमाना हम काबिल नहीं थे, संतों ने दिया कि काट कर कर लिया, बच्चों को बिठाओ वो भी देख बताओ, मैं गया था खुल जाए, माँ को 25 से ज्यादा बच्चे बैठे सभी, सबको होकर फिर भूला लाइट आ गई दुनिया। तो ये कोई मिरेकल नहीं, बाकायदा साइंटिफिक ग्राउंड पर है, बाहर से हटने का सवाल है कुछ नहीं, बाहर से हटने के लिए थोड़ा कुछ ही चाहिए, वो बाहर से गुरुमुख को तो धारा देना नहीं कर बात। तो इस बाहर से हटने के लिए जब उसके लिए क्या करना, बाहर से हटकर अंतर बैठना, चुपचाप बाहर से हटोगे जो फैली दिखती है अंतर्मुख होंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी, इसमें बड़ी भारी ताकत। मैंने कल भी अर्ज किया था कि सूर्य की किरणें किसी को जलाती नहीं, अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास करे दूसरी तरफ आग लग जाती। ये सुत है, ये सतनाम की गोत वाली सब है, तुम उस प्रभु के बच्चे हो, शेर के बच्चे हो, बड़ी भारी ताकत तुम में है, फैलाव के कारण निर्बल हो कमजोर, हाय माओ हाये हाय। तो संत कहते देखो भाई तुम आत्मा हो, हमारे जो एक मिसाल फरमाया करते थे, एक शेर का बच्चा था, किसी पाली ने लेकर बकरियों में और भेड़ों में मिला दिया, एक शेर आया उसने समझा मैं बकरी वो घास फूस खाकर गुजारा होता है। एक शेर आया देखा ये मेरा बच्चा भाई शेर का बच्चा है ये क्या हो गया उसको बुलाया पानी के किनारे गया कहा देख भाई तेरी शक्ल मेरी बनती है कि नहीं क्या हाँ क्या देख मैं भी गई तो तू भी गरे कहते जब वो भी गर जा वो भी गर जा सब पानी भी भाग गया भेड़े भी भाग गई मतलब क्या आत्मा सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं ये जब कॉस्मिक है कॉन्शियसनेस जो सुपर कॉन्शियसनेस का इजहार है उसका मतलब मंदिर जो घाट पर फैला हुआ बकरी की तरह क्या रहा वहां पर क्या भाई देख वो आत्मा है आत्मा बलवान है तुम शेर के बच्चे क्यों निर्बल कमजोर हो तो वो ये सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि थोड़ा एक कदम उठवाते नहीं अपने से पहले दिन ही ऊपर लाते ये उनकी बढ़ाई आम महात्मा आपको इंद्रों के घाट के साथ बतलाते ये मैं बड़ा खोल कर पेश कर रहा हूँ कोई गलतफहमी न रहे इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारे दिल में उनके लिए इज्जत नहीं है भाई स्कूल में गए तख्ती कर दुआ लो ठीक है जो पोथियों को पढ़ो पढ़ने से एक शौक बनता है कुछ भाई ये जो कि मैं पेश कर रहा हूँ ये ग्रंथों पोथियों में इनका जिक्र है हमें समझ नहीं आ रहा कारण वो जब तक प्राइस ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे जमरे खोलूंगा नहीं इंटरलाइट के तुम समझ नहीं सकते बात बड़ी सीधी सारी तो जब वो खोलेगा तो जब वो खोलेगा तो वही बात बड़ी साफ वही ग्रंथ पोथियों और कुछ बतलाएंगे हैं वही जो आगे थी वो नई चीज नहीं तो उसके पास एक बात की समझ आ गई वो जिसकी समझ आई है जिसको जानने के लिए ये सब कुछ जमीन की तैयारी कर रहे हैं ये तो ही तैयारी इंद्रों के घाट में जितने साधन हैं इससे जमीन की तैयारी हुई अभी अगला कदम और उठाना है जिसके सवाल मुक्ति नहीं हो सकती तो संतों ने पहले दीदी भाई कहा जहाँ जहाँ बैठे हो ठीक है हर एक समाज अच्छी है उसमें भाव भक्ति पैदा करने के लिए ग्रंथों पोथियों के फायदा है करो कुछ न कुछ समझ आए जमीन की तैयारी हो जाए भाव भक्ति बन जाए और चलो आगे जो आगे चलना था वो गए हम भूत जैसे जैसे जमाना बदलता आज इस बात की जरूरत है मैं याद करूंगा एक समाज की किताब न पढ़ो सब समाजों की किताबें पढ़ो जो अनुभवी पुरुष हुए हैं सबको पढ़ो पैलेट ठाक में ले जाओ मुझे शुरू ही पैलेट स्टडी ऑफ रिलीजन के शौक था हमारे हजूर को खास कर था वो दिन को लोग 12 बजे कहते आराम करते थे 12 खाना खाकर तक 4-5 बजे तक आराम कर रहे थे उस आराम में क्या करते वो ग्रंथों पोथी कर पाए जाए एक मजहब की दूसरे की तीसरे की चौथे की चुनाचे उन्होंने कहा कि वास्तव मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ तुमने इसको बाकायदा चलाना होगा यहां तक ही कहा उन्होंने कई ग्रंथ पोथियां ऐसी समाजों की जो अभी तक प्रिंट में नहीं आई वो इकट्ठी की थी उन सब में इसी बात के इशारे हैं क्योंकि आमिल पुष्प के बगैर वो समझ नहीं आते वो सील्ड बुक्स हैं बस सील्ड चली आई सील्ड चली जा रही तो मैं याद करूंगा कि अनुभवी पुरुषों की तालीम कहां से शुरू होती है इंद्रों के घाट के ऊपर साइंस ऑफ द हार्ट का थियोसोफिस में वॉइस ऑफ द साइलेंस में लिखा है द वेरी साइलेंस बिकम्स वोकल साइलेंस तो पहले इंट्यूशन होती याद होती इंट्यूशन एक ख्याल है वो अपने आप एक चीज वो किसके बेसिस पर है वो पिछले एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट लाइफ का सब तौर का रिजल्ट है मैथ संत उस पर भी एक बात नहीं करते कहते और कदम आगे चलो इंट्यूशन से भी आगे चलो मौत की सौगात जैसे में आए खत्म की बाणी तैसा करेगी आगे वाले वो कौन से उसको वर्क ऑफ डिवाइन प्लान के बनते हैं वो कह रहा मैं नहीं कह रहा अब देखिए इंट्यूशन ज्यादातर लोग पढ़े लिखे इंट्यूशन ही को सब कुछ मान रहे हैं ठीक है वो जितना किसी इंट्यूशन इंट्यूशन में थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आएगा मगर अवेयरनेस में कोई फर्क नहीं सिर्फ कॉन्शियस कॉस्मिक अवेयरनेस में लोग पहुंचे हैं बस में जाकर नया हो गए बस कुछ फर्क नहीं। संत से आगे भी जाग रहा हूँ, सुपर कॉन्शियस। तो इसकी एबीसी कहाँ से शुरू होती है? साइलेंस से। और वो जो उसमें ख्याल उपजे दयालिक पावा, क्यों वो चार्ज होकर आ रहे हैं। जो खाली बुद्धि के बाहर से लफ्ज है उनका असर दूसरों के दिलों पर नहीं जाते, यहां पर जो उससे चार्ज होकर आते हैं पावर से, वो दूसरे के दिलों में असर करते हैं। क्राइस्ट के मुतल्लिक कहा था, इज वर्ल्ड वॉज विद पावर। लोग हैरान होते थे कि इसके दिल में हमारे दिल में क्यों लफ्ज असर कर रहे हैं। कहते हैरान थे कि इसके लफ्ज में एक ताकत, क्योंकि अवेयरनेस से आ रही है। तो इसके लिए करना क्या होगा? यहां पर वह ठंडे दिल से बेचारा कि ये जो मन है ना, जिसको आप कहते हैं मन, ये सच्चा टेम्पल है। मन आत्मा और जिस्म के दरमियान एक कनेक्टिव लिंक है। अगर इसका रुख इंद्रियों के घाट की तरफ हो गया, ये जमीनी बन गया। अगर इसका रुख आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया। हाबिल काबिल का किस्सा आपने पढ़ा होगा कि एक को मारा, दूसरा जीता रहा, आगे चले। जो जिस्म से मन ताल्लुक रखता है वो चूड़ा मन उसको कहते हैं, वो मीठे इंद्रियों की गुलाजमत करता रहता है। तो इसको इधर से हटाना है कहो, या इसको मारना है कहो, लाइक फायर इट इज ए गुड सर्विस बट ए बैड मास्टर। आग की तरह जो एक बड़ा अच्छा नौकर है, अगर तुम्हारी आज्ञा में रहे तो, अगर ना रहे तो आग हम पर कब्जा पा जाए, हमको फूक कर फरा जाए। तो इसलिए कहा माइंड खड़ा होता, विक्ट्री ओवर द माइंड, विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड। हमारे और उसके उस ऑल कॉन्शियस सुपर कॉन्शियसनेस या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को पाने के लिए मन को खड़ा करना होगा। मन जीते जग जीत। अगर हम चाहते हैं हम उस हकीकत को पा जाए, तो मन को खड़ा करना पहला करना। दूसरा कदम जो आप उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। घर तो दारी दर्द ने खुद अजम रफ्तम सुए दोस्त, यक कदम बंदक से खुद में बिगड़े दर सुए दोस्त। अगर तुम प्रभु के देश जाना चाहते हो तो एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। तो मन का, मन ही एक इसको एक टेम्पल बना, इट इज इन द माइंड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। इस मन ही बड़ा कीर्ति की है भाई, मन तू ज्योत स्वरूप है। अगर इसमें काम करोगे बाहर से हटक आकर, ये बड़ा मददगार नौकर बन जाता। आज हमारे कब्जे में तुम्हारी रोटियां भी जलाता। अगर माफ करना मन ना हो तो ये दुनिया की एग्जिस्टेंस ही ना हो। आत्मा ऑल कॉन्शियसनेस एकम स्वरूप, जड़ से कैसे मिलते, ये कनेक्टिंग लिंक है। इतना सूक्ष्म है कि आत्मा से मिल जाता है, इतना स्थूल है कि जिसम पर उमड़ जाता है। इसलिए ये काम सिर्फ इसके रुख के बदलने का सवाल है। इधर से हटो उधर मुंह करो, ये मददगार है, हकीकत को पा जाओगे। अगर इसका मुंह इधर ही रहा तो काम नहीं बनेगा। एक फकीर ने कहा, बिनकर दर हैवान, हैवान की तरफ नजर मार कर देखो कि सर सूए जमींदार, उसके सिर्फ परमात्मा जमीन की तरफ बनाया। ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं। कहते तो सारी उम्र ही खाने पीने भोगने में लगा रहे तो कोई बात नहीं। तो आखिर आदमी तू इंसान है, तेरा मुंह तो ऊंचा बना, उसको देख तेरी आत्मा का इजहार कहां होता है। आंखों के अंतर आंखें कहां है, ऊपर नीचे तो नहीं। क्या तू आखिर आदमी है? तो इस मन को मंदिर बना लोगे, इसमें सब खुशबुएं हैं, इसमें बड़ी भारी महक है, इसी में हर एक वो कसूर। आप पूजा के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं? चंदन लेप कर माथे पर लगाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अगर तुम मन को ही फूल बनाकर उस पर चढ़ा दो, इस की इंटरेस्ट बनाकर आत्मा पर चढ़ा दो तो कामयाब हो गए कि नहीं। पूजा में क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन घेरते हैं, यहाँ पर लगाते हैं टीके। अरे भाई यही टीका लगाना होगा, मन को यहाँ लाओ, इंदों का घाट छुड़ाओ, पति को पाने के काबिल हो जाओ। तो मेंटल वर्शिप जो है ना, ये सब चीज लोग जबानी करते हैं, सूर्यों में जिस्म के लिंग के साथ उस जो शुद्धि होगी उसके साथ सुंपनी पैदा करना चाहते हैं, वो भी जिस्म से कर। अगर जिस्म नहीं रहेगा तो क्या करोगे भाई, बात समझे नहीं। तो जिस्म से भी ऊपर आओ, मन को मंदिर बना, बुद्धि से कर रहे हो तो भी इंद्रियों से निकाल रहे हो, किसी किस नतीजे पर पहुंचे चीज को नहीं पाया। तो संत कहते कि मिनटो चिंता करो, ये शुद्ध का मार्ग है, शुद्ध से काम लो, इस यल्बे शुद्ध से शुरू होगी, तुम शुद्ध हो। शुद्ध ही मन के अधीन होकर जो जिस्म का और इंद्रियों का रूप बनी बैठती है, इसको एनालाइज करो, और इसका जब सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो ओवर सेल्फ कहो, उसको पाकर सुपर कॉन्शियसनेस में जाते। ये है सारा आवेदन डाइजेस्ट। जितने भी नुस्खे परमात्मा के पाने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ गॉड के लिए बनाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा नुस्खा यही, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है आपको पता, बाहर से हटना पड़ता और तो कुछ। मेडिटेशन किसको कहते हैं, बाहर से हटो, अंतर एक खड़े हो जाओ। अब अंतर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई चीज न मिले। तो अंदर ही पूछे आपको पहले दिन क्या करता है, अंतर्मुख करके एक चीज खड़े होने को दे देता है, क्या लाइट। आम दुनिया के लोग आगे कहते फोटो का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, समझे, बाहर बुतों का ध्यान करो, पास महात्मा का ध्यान करो, उसके लिए कुछ खुद बनाना पड़ता। तो अनवही पुष्ट तुमको पहले दिन ही अंतर वो लाइट ऑफ गॉड ज्योति को विकास कर देता है, कहते ये खड़े होने के लिए पकड़ो इतनी भारी सवीर। तो इसके ना पाने हैं हमें वो तकलीफ बन रही, तो उसके लिए क्या काम करना होगा, अपने बस की चीज है नहीं। इंदों के घाट से तुम कैसे उसको जाते, एक मकान के अंदर तुम बंद हो, कितने भी कूदो उछलो छलांगे मारो, आकर छत के अंदर रहो। एक मिसाल के तौर पर एक अंडा है, अंडे के अंदर उसको जो मुर्गी है उसको सेती, तो मुर्गी उसको कहते सेने सेने, तो वो अंडा जब बच्चा बन जाता है ना छिलके के अंदर, तो वो कहती है बच्चा बाहर बड़ा सूर्य चढ़ा पड़ा, बाहर बड़े चौग हैं, बड़े मैदान हैं। तो बच्चा क्या कहता है कि माता होंगे, मैं तो अंधेरे में हूं। आप देखते हैं हम लोगों को ग्रंथ पोथी पश्चिम अंतर में प्रकाश है, ज्योति का विकास है, बड़े नए मंडल हैं, ये कहते हैं ना महात्मा। कहा अंदर नौ खंड पृथ्वी हार पठन बाहर जा रहा है, इसमें परमात्मा बस रहा है। होंगे महाराज, पता नहीं होंगे, काय के अंतर क्या अंधेरे ही है। मैं एक महात्मा जी से मिला, वहां गए, वो कह रहे अंतर में क्या, अंतर में खून है, हड्डिये हैं, निज है, राजत है, क्या है, सूर्य देखे तो बाहर नहीं चला, बाहर देख ले। तो मुझे पूछने लगे क्यों भाई कुछ कहना हो, कहते महाराज मैं आपको खुशबू सुनकर आया था, खुशबू मुझे मिल गई, तो पोते बड़े गोल खजाने हैं, इनको और खोल कर देखना चाहिए, जिन्हें समझ आई है खुशी की बात। तो महापुरुष पहले दिन आपको एक पूंजी देता है, संतनों को पूंजी सौंपी, पूंजी क्या देता है, अंतर खड़े होने को सामान देता है, ज्योति और शुद्ध धुनी के साथ जोड़ता है, प्रभु की धुनी के साथ और ज्योति का विकास करता है, ये खड़े होने को देती है। अब खड़े होने को चीज मिले, इसका नाम है मेडिटेशन। अपनी बनाई चीज पर नहीं, बैठी जो रोन में गदे का ध्यान करो, गंदा घोड़े का करो घोड़ा, ये अपने आप आगे निर्जीदा है, सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है, अंतर में होकर उसका एक्सपीरियंस दे देते हरे को, इसको डेवलप करो रोज हो। तो इसलिए मेंटल वर्कशिप जरूरी है। सुख का मार विक्र रूही जुल फने दरवेश में, ये रूह का जो जिक्र है, सुख का जो मार्ग है, ये काम फकीरों का रास्ता है। तो संतों का मार्ग सुख योग है, सुख का मार्ग लिखवा में आप फर्क देख रहे हैं। आप प्राणों के मार्ग में और सुख के मार्ग में क्या फर्क है? प्राणों वाले भी प्राणों को कुंभ करके आकर आगे वही रास्ता। तो संतों ने जमाने के हालात देख कर रहे हैं कि एहसास कट कर दिया, पहले दिन ही यहां बता देते चलो भैया। इसलिए जितने भी नुस्खे हैं उनमें से काम मेडिटेशन का, इन्वर्शन का है, बात से हटने का बात। और उसके लिए आदमी गिर गिर कर सवाल होता है प्रेयर के लिए। हम प्रार्थना किससे करते हैं? किसी सम्राट पुरुष से। सम्राट पुरुष पर भरोसा रख के हम पुकार करते हमारा जज। एक आदमी सख्त बीमार है, लाचार है, डॉक्टर बड़े लाश चलाए, डॉक्टर बुलाया जाता है, वो कहते तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना है भाई, है ऑपरेशन बड़ा खतरनाक, शायद तुम मर जाओ, हमें लिख दो कि अगर तुम मर भी जाओ तो हम जिम्मेवार नहीं। तो कहता अच्छा डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे वाला, तुम क्या करो, मेरी मदद करो जैसे भी हो सकता। ये जो गिली उभार है ना, किसी की समर्थता पर एक बार करके हवाले करना, इसका नाम है प्रेयर। एक दफा हमारे रूप से रात का समय था, मैं था, डॉक्टर जान सिंह बैठे हुए थे रात को 9-10-11 बजे सर्दी के दिन थे। तो डॉक्टर जान सिंह ने सवाल किया कि हर सिख को मानना चाहिए कि नहीं, प्रेयर करना चाहिए किसी चीज के लिए। तो हजूर ने कहा सिख तो हमेशा ही गुरु के दर का मानता है, मानने वाले मरु से क्या मांगो? सवाल तो यह है, धर्म काम और मोक्ष चार ही पदार्थ है जो उसके पास है, मगर उसके पास जाकर वो चीज मांगो मोक्ष, उस दौलत सच्ची दौलत को जो वो देने आया, वो सच्चा पास क्या है। उसके पास जाकर दुनिया की चीजें मांगे तो मिलेगी तो सही, फिर भी दुनिया ही में रहोगे ना। फिर भी उनके पास जाओ महाराज, गुरुजी साहब ने प्रेयर की है बड़ी खूबसूरती से, संतन की शरणाई पड़ा, संतों की शरण में मैं गया, जीव प्राण सब आगे धरया, जान और प्राण दोनों ही उसके आगे अर्पण कर लें, सेवा सुख न जाना का ही दया करो किरमाई। यह संतो मुझे सुख की सेवा करनी नहीं आई, ये सुख की सेवा विद स्पिरिट जो सेवा वो क्या है इसकी समझ नहीं, आप दया करो, हम किन्नों के घास के कीड़े बन रहे, दया करो। ये है सुख का मार्ग जो संत महात्मा हमको देते हैं। इसके करने के लिए मेडिटेशन करनी है, मगर मेडिटेशन के बनाने के लिए प्रेयर करनी, प्रेयर वो काम करती है जिसको देखकर अकल हैरान लगे। प्रेयर उसी से होते जहां फेथ हो, भरोसा हो, कॉन्फिडेंसी हो, किसी की समर्था पर एक बार हो, तब प्रेयर होती। हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा है, अगर तू है, अरे भाई तू कहां है या वहां है, कोई ऐसी प्रेयर कहां जाए? तो एक सिक्स या पर्पल का हो, फेथ इज रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन, परमार्थ की जमीन है फेथ, इसके बड़ा काम होगा। तो प्रेयर और मेडिटेशन साइड बाय साइड करते हैं। कई बार हम अपने आकर चलो बैठ जाते हैं, अक्सर बैठते घंटे बैठे बनते ही कुछ नहीं। अरे मैं हमेशा आपसे अर्ज किया करता हूं कि गुरु मंडल बनाओ। गुरु नाम देता है साथ हो बैठता, अरे द्वारका वासी कृष्ण को ना बुलाओ, उस कृष्ण को बुलाओ जो तुम्हारी आत्मा के नजदीक है। कृष्ण के नौकरी मैंने जो आत्मा से नजदीक हो। बात नौकरी का जिक्र आता है, जब उसका तीर हरण हुआ, तीर हरण पहले धोती उतारी गई ना, फिर नंगे हो गए, पीछे भगवान आकर उन्होंने सहायता की तो कहने लगे भगवान मेरी इज्जत तो उतरी गई थी जब धोती खुली सिर सारा नहीं खुली थी उस खुली सिर से पर्दा उतर गया मेरी इज्जत तो उतरी आप पहले क्यों नहीं आए तो कहने लगे भाई किसको तुमने बुलाया था अरे मैंने कहा था द्वारका वासी कृष्ण जी पहुंचो सर मैंने द्वारका से आना था ना अगर तुम कृष्ण को पुकार करते मैं तो तेरी आत्मा के नजदीक था फौरन आ जाता तो उस गुरु को ना बुलाओ जो अमेरिका में बैठा है या इंडिया में या अफ्रीका में या यूरोप में उसको बुलाओ जो तुम्हारे साथ नाम देती साथ हो बैठता वो तुम्हारे अंतर में है उससे प्रेयर को मदद मिलती तो प्रेयर और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं इस ये सबसे बड़ा क्या कहें पोटेंट नुस्खा है जो तुम्हारी इस बीमार कामयाबी में मददगार हो जाए आप इन बातों में न रहो ये आर्ग्यू न करो कि आपको क्या मिलता गुरु मिल गए अब उसके लक्ष्य को बेशक गुरु करने से पहले छानबीन करो देखो मिला है क्या मिला है तो अच्छी बात नहीं तो काचे गुरु को छत से कष्ट न लगे वहां तो जीवन बर्बाद करते नहीं मिला तो कहो महाराज मेरे पास कई भाई आते हैं चाहे जिंदी मैं उनके पास जाओ महाराज क्या करो मेरे दिन में सब गुरुओं के लिए इज्जत है महाराज ये दो ना दे सके तो आप मेरी सेवा दे तो मैं भी हजूर के भरोसे पर कहते आओ भाई मेरी सेवा दे अपने भरोसे पर नहीं पर सवाल यह है कि जब मिलता है या नहीं करना क्या है एक बड़ा मोटा सा नुस्खा है क्या यह आज जो रिवाज नहीं रहा स्वामी जी और तुलसी साहब और पहले महापुरुषों के जमाने में ये रिवाज था दिनों दिन जमाने बदलते रहते हैं थोड़े बाहरी भी थोड़े सिर से बदल जाते हैं बस आखिर चीज वही है जिसको पाना वो क्या करते थे वो आरती किया करता है आरती का मतलब आ सकते आकर रख जाना सत्संग में आए हो सत्संग करो बना कर करो वो क्या है जब तुम वहां बैठे हो तुम रहो या वो जिससे सत्संग है वो रहे और कोई न रहे न दाए न बाए न इसकी हो न उसकी हो बस सिर्फ वही रह जा तो उसमें क्या करो पास बैठो सब सर से अच्छा कर आइज आइज में देखो आइज रूह के इजहार प्ले की जगह जैसी रूह होगी उसके साथ में वैसे ही आपको इन्फेक्शन मिलेगी इसको कहते हैं आरती ये था रवाज बेशक तुम जवान न समझो वो क्या कह रहा है सिर्फ लेट सोल स्पीक टू सो आत्मा आत्मा को बोले लक्ष्यों का ना भी समझे तो वो जो वो कहता उसका जो बैकग्राउंड है ना उसके खूब समझा तो ये सबसे आला नुस्खा जिससे खमीर आग जलती ही मिल जाती महापित्र साध का संग जिस पेट लागा हरी रंग महापित्र साधु की संगत देने वाली है जिसके ये मैंने सोल आत्मा आत्मा से बोले न जिस्म का प्यार रहे न बाहर का रहे न नीचे का रहे न हुई है उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा आंखों से इजहार करती है रिसेप्टिव बन जा जो उसका है जो थिंक सो यू बिकम इसमें और कुछ नहीं सिर्फ बाहर से आते जिन्हें बाहर की आवाज बाहर के ख्याल तो उसको नफी कर दो वो रहे और तुम्हारी आत्मा रहे तुम्हारी आत्मा में बोले मैं जब भी हजूर के पास बैठा करता कभी बातें नहीं करता न कभी सवाल किया करता था चुपचाप देखकर किनारे बैठ जाता चुपचाप देखकर मैंने एक सवाल सारी जिंदगी में किया शुरू में वो भी ये साइंस बड़ी मुकम्मल है इसका क्या सबूत है कि आपके बाद भी ये रहेगी अगर रहेगी तो किस शक्ल में होगी ये सवाल मैंने किया तो फरमाने लगे जिसको मैं कह जाऊंगा वहां तो होगी ये चीज, बाकियों का मैं जिम्मेवार नहीं। ये लक्ष्य है 1924 की बात, और वो सिख चक्र में हो। तो मैं क्या करता था, कभी सवाल नहीं किया, जो क्या वो सत्संग करते थे मैं सुनता रहता, प्राइवेट जाना बैठे रहना, कभी हजूर ने ये नहीं कहा ना बैठे, चुपचाप बैठे थे। उनके हर एक्टर जो होता है ना, हर एक काम में उसका एक्टिंग होता, घर की बात करें ड्यूटी पे मैं खाली देखता रहता था, वो जो चीज मिलती है ना वहां से मिलती रहती थी, लोगों को क्या पता क्या मिलता। तो ये मैं राज की बातें इसलिए पेश कर रहा हूं, मुझे इससे फायदा हुआ, आपको भी शायद फायदा हो जाए। अगर आप ये चीज मनाने लगे हो दिल को, तो उसको जिस चीज से तुमको आपको अच्छी लग रही है वो मुझे कैसे मिली मैं आपको बता रहा हूं खोलकर। तो ये तरीका है, ये आर्ग्यू ना करें महाराज ये क्या है वो क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, फलाना क्या हुआ, फलाना क्या कहता, फलाना क्या कहता। अरे भाई वो रू रू से जब बोलती है नहीं, सारी चीजें हल हो जाती, वहां सोचने की जरूरत नहीं। वो सुपर कॉन्शियसनेस में जो रिंग रू है, कॉस्मिक कॉन्शियस में आके एक पोल पर इजहार कर रही है, वो उसका ज्ञान देती है तुमको, जो सारी उम्र गन पोती उपस्थित है उसकी समझ भी नहीं आई। जो मैं आपको चीज पेश कर रहा हूं बड़े सिंपल सादा लफ्जों में है, कोई टर्म कोई सलाह है ना, एक मजहब की न दूसरी की एक हकीकत है, जिसको मैं थोड़ी समझ आई हजूर के चरणों में बैठकर वो आपके सामने रखी जा रही। तो ये है कि अब जिंदगी किसकी जिंदगी सवाल आ, तो साल्ट ऑफ लाइफ क्या है, नमक जिस खाने में ना वो बेमजा होता है ना, जैसे खाना बे नमक किसी कोई खास लंच नहीं देता है, इसे साल्ट ऑफ लाइफ क्या है, सेल्फलेस सर्व, सेल्फलेस सर्व, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा तो सबको बच्चों को पालता है, अपना जिसम पालता है, रिश्तेदारों को दोस्तों मित्रों को पालता है। अरे भाई जिसने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव किया है, सुपर का तो लय हो जाना है ना, वो सब मैं उसी को दे, ये सारी विचार। आपको पता है साधु की तारीफ तुलसी साहब ने क्या दी, गुरु देवे जो शिष्य को साध कहावे, तो जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है वो साधु। क्यों भाई, उसकी तो आंखों वो तो अवेयरनेस है ना, उसमें जैसे सब में वही, उसको पहले नमस्कार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुरु तो खड़ा रहता खड़ा हुआ लोग मत्थे टेकते कर मर जाते, अगर वो बेचारे नाम भी मत्था टेके तो क्या बात है, वो बेचारे के आंसर नहीं कुछ। जब वो इंसान देख लेता है, अगर फर्क को ना भी देखे चलो, कम अज कम इस बात का पता हम वही पुत्रों से मिल जाए कि वो सब में है, तो सब कदम करना चाहिए कि नहीं। क्यों विधान इसलिए कि हर दिन खुदा हर एक दिन में वो परमात्मा बस रहा है, ये जान भी खाली दो तो हर की इज्जत करने बनती है कभी। तो जो देखता है तो ऑल कॉन्शियसनेस हेल्पलेस सर्विस को प्रदूष की शुरू होगी। आप किसकी सेवा कर रहे हो, अपनी सेल्फ की नहीं ऑल सेल्फ की, खुद ही इतनी फैल गई कि सारा विश्व ही तुम्हारा रूप बन गया। ये है साल्ट ऑफ लाइफ। ब्रेड ऑफ लाइफ क्या है, यू कैन नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन। तो ब्रेड ऑफ लाइफ हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, इसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की खुराक में इसकी सेल्फनेस बीच से दूर हो जाए तो क्या नतीजा होगा, वो कॉन्शियसनेस ऑल गॉड इज लव, आत्मा सब उसी के सभी प्रेम का इजहार हो रही है, इसलिए उसका सबसे प्यार। तो ब्रेड ऑफ लाइफ इज यूनिवर्सल लव, सबसे पहले ये जिंदगी की रोटी। आप थोड़ा इसे ख्याल करने से देखो नशा आ जाएगा, अगर सचमुच बन जाए क्या करें। अब जिंदगी की मिठास किस में, स्वीटनेस ऑफ लाइफ किस बात में है,
डिवोशन, डिवोशन जिसके अंदर भाव भक्ति बढ़े उसका जीवन बड़ा मिठास का भरा रहता है, भक्ति रहता है ना, जिसके अंदर भक्ति रहता आ गया उसके अंदर डिवोशन, डिवोशन है उसकी जिंदगी मिठास हो गई। भाव है जो प्रेम है उसका नाम है डिवोशन, ये कह दो भक्ति। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग, प्रेम हर एक चीज को खूबसूरत बना देता, दुखों को भी खूबसूरत बना देता। जो भक्ति भाव में है उनको दुख भी आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको मिठास कौन देने वाला, वो जिससे प्यार है। फिर आपको पता है राधे को एक दफा किसी भगवान का नाखून लग गया था, थोड़ा जख्म हो गया, तो एक वर्ष गुजर गया वो जख्म वैसे का वैसा ताजा था। पूछा राधे ये क्या हो, कहते ये भगवान का नाखून लगा था, फिर अभी तक खाली है, कहते जब यहाँ ठीक हो ना मैं फिर इसको ताजा कर दी। इसका नाम है डिवोशन। हम ये लफ्ज सुनते तो हैं, इसका हमें पता नहीं मुंह से कैसे भी है, डिवोशन क्या चीज है। ये भाव का बनना, इसका नाम है डिवोशन। हमारे जीवन की खुशबू किस बात, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ, जेनरॉसिटी, याद होना, देना, देते रहो। कबीर साहब क्या कहते, जब तक देह देह कुछ दे, जो देता है किन को, हाजतमंद को, भूखे को, नंगों को, प्यासों को बांध कर। कई बार कबीर साहब थे उनके घर खाने को भी नहीं रहता था। एक बार वो तंग आ गए, अरे भाई हमें खाने को ले, लोग आते हैं ये दे देते हैं, बड़ी मुश्किल बन गई। तो जो थी ना क्या नाम था कबीर साहब, माता लोही, उन्हें क्या तो बड़ा काम बना है, रोज लोग आ जाते हैं ये सबको खाने दे, हमें भूखा मरना पड़ता है। उन्होंने क्या किया भाई, एक आदमी आ गया उनकी एक्सिस में, तो क्या किया लड़के को कहा भी ऐसे छुरी तैयार करो तो रस्ता रख लो, ये लोग आ गए छोड़ते नहीं। वैसे वो आदमी आया कि कबीर साहब का मकान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है, कभी आओ भाई बैठो। वो छुरी लेकर पेश करने लगे, पूछे क्या करते हो, सर जी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, कबीर साहब का दबाव ठीक नहीं रहा, वो जो भी आते खाना उन्हें खिला कर ये छुरी चेंज करा लेते हैं, रस्ते से बांध करके काट लेते। अरे अच्छा भागा, चलिए भाई अभी आने वाले हैं कबीर साहब, हम ये तैयार कर रहे हैं, तुम्हें खाना खिलाएंगे और मारे तुमको मार देंगे। वो भागा मार दे, इतने कबीर साहब आ गए, पूछने लगे क्या बात है भाई, कह रहे वो आदमी आया तो वो रस्ता मांगकर है, कहने के भाई हमारे काम की चीज हम तो देते नहीं, चले वो नाच होकर चला गया, चले कोई रस्ता साथ ले, साथ लिया पीछे भागे, अरे भाई ठहर जाओ, वो आगे आगे भागे पीछे कभी साहब भागे। वो इस घर में था कि ये मुझे मार रहे थे, वो तू यार बचे क्या मुझे, कभी हिसाब से कि भाई एक आदमी घर में आया है खाली न जाए, वो इस घर में तो मुझे मार ना दे, तो ये खोतर देती ही रहती है मुझे नाच की समझ, दूसरे लोगों की जो आंख नहीं बनती वो क्या कुछ समझते। तो जेनरॉसिटी जो है ना सबको फैल कर दो बांध कर। तुलसी साहब ने कहा कि
अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारे घर में दौलत हो जाए तो बांध लो, नहीं तो डूब मरोगे। समझे? मिसाल दी कि एक बेड़ी में पानी भर गया, अब तुम्हारी बचत इसी को पानी को दोनों हाथों से बाहर फेंको। जिसमें ये है लुत्फ समझो वो उसकी जिंदगी खुशबू दे रही है। ऐसे पुष्प की बात सुनकर लोग भागे भागे हैं, जो खुशबू फैलती है ना, तो जिंदगी की खुशबू इस बात में जनरॉसिटी हो। मैंने दो तीन चीजें बयान की आपको, साल्ट ऑफ लाइफ किस बात में है, निष्काम सेवा जिसमें तुम्हारा कोई गर्व नहीं और कॉन्शियसनेस की नजर से दे रहे सब में बोले वही देने वाला। ब्रेड ऑफ लाइफ किस बात में है, सब में वो है सबसे प्यार, इसको तुम्हारी रूह को गुजार मिलेगी, तृप्ति आएगी, देख देख कर संतुष्टि अपने साथ। स्वीटनेस ऑफ लाइफ किस में है, मिठास जीवो से भक्ति भाव पैदा कर समरस जान कर हवाले कर। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइये सहजे मनुषान, हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता सहज में प्रभु घट में प्रगट हो जाता। गुरु भक्ति में क्या रहेगा, तुम तो भक्त हो ना उसके, देखिए बात सोल आत्मा आत्मा से बोलेगी। मनुष्य को हमने देखा नहीं, माफ करना, जिसको देखा नहीं उसको कहा देखोगे। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले, ब्रह्म बोलता काया के पीछे, अगर काया ना हो तो ब्रह्म कहां से बोल रहे। तो जिसमें वो इजहार कर रहा है उसका नाम है गुरु। तो गुरु भक्ति को, गुरु भक्ति प्रीसीड्स गॉड, कैसे मिलती है वो मैंने अभी अर्ज किया था, ये नहीं था आंखों का आंखों से रखा बात, यहां रूह का प्ले हो रहा। याद रखो यहां एक बड़ा खतरा है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओगे। अगर किसी ऐसे पुरुष का ध्यान किया जिसमें सेल्फिशनेस बस रही है, दुनिया की इकरार बन रही है, वो एक्टिंग पोजिंग कर रहा है, वैसे ही तुम बनोगे। तो उसके लिए मोटी से मोटी निशानी जो हर कोई जान सकता वो तुम्हें दे क्या सकते। हर एक महापुरुषों की वाणी में गुरु का ध्यान लिखा, और आम लोग यही कहते हैं मेरा ध्यान करो, और मैंने कभी भी क्या उसे क्यों, कि समृद्ध पुरुष जो है अपने आप घट में, अगर वो समृद्ध है नाम दिया साथ बैठा जोलकर जाए तो मिलेगा कि नहीं, जोलकर में अपने आप आता है, खुदा वही है जो खुदा बा खुदा खुदा, समृद्ध पुरुष वही है जो अपने आप अंतर में बगैर कहे बगैर देखे के भी आ जाए। मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं, आप भी देखते हैं, कि जिन्होंने कभी देखा नहीं उनको कई कई साल पहले शुरू पाता, अब मैं पाकिस्तान में गया एक छूटी मिले थे तीन साल से पहले शुरू पाता था, बराबर हमारे को कैसे ऐसे कहते रोज नाम देते हजूर का शुरू आप भी आ जाता लोग। अरे भाई ये काल का काम नहीं, धोखे में ना रह लो, समझा, जो अपने आप बगैर देखे आता वो काल कैसे आते। और फिर आपके पास एक कसौती भी या पांच नाम भी फर्क हो, तो डिवोशन गुरु भक्ति से बनती है याद, ये पहला जीना उसका काम ध्यान कर सकते आप, जो आकार निराकार और दोनों से बैकग्राउंड है उसका कभी लय होने का मुकाम मिलेगा, जब तक वो किसी वो है सब में, और जब तक वो इजहार पोल जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कहते हैं, उससे भक्ति कहते हैं, भक्ति उसी की होगा जिसको रस मिला हो, रस उसी का होगा जिसको देखा हो, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कहते, बिन देखे कैसे को ध्यान। तो ध्यान आपने देखा बड़ा खतरनाक, मत ध्यान کے دن واسطے جو دیتا چلا جاتا کیا نام کے جپنے سے اس پریپورن پرماتما کے پھول بننے سے ایسا ہو وہ ساری دنیا اس کو دے جب سورج چڑھتا ہے تو سب کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں تو جنرس ہونا جنراسٹی جو ہے تیاگی کہو دینا کہو وہ دینا ہی جانتا ہے دے کچھ دے ہر ایک چیز تن کر کے سیوا دھن کر کے سیوا من کر کے سیوا اور آتم سے یہ سب سے بڑی ان بھری پوش کی آتم سیوا ایک دفعہ دے رہا تھا وہاں سیوا ہوتی تھی نا بوری اٹھا کے ادھر ادھر جاتے تھے تو میں بھی ایک بوری رکھ کر چل پڑ گیا تو جینٹل مین کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ آپ کی سیوا نہیں آپ کا سیوا ستسنگ کرنا میں کہ میں جسم رکھتا ہوں بھائی یہ بھی ہے میرا فرض میں جسم رکھتا ہوں جسم کی سیوا بھی چاہیے میں بدھی رکھتا ہوں بدھی کی سیوا بھی چاہیے میں من رکھتا ہوں سارت کا بھلا بھی چاہیے یہ اصل سیوا تو جنراسٹی ایک فریگمنٹ کا خوشبو ہے جہاں آئے گی سب بھاگے گا وہ کوئی انویٹیشن نہیں دیتے وہ کوئی پروپیگنڈسٹ نہیں رکھتے ان کی خوشبو دور دور تک جاتی اپنے آپ بھاگے لوگ چاہیے ابھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بابا جیمن سنگھ جی مہاراج آگرہ سے آئے تھے کیا لائے تھے اپنے گرو کو ساتھ لائے تھے ارے بھائی جہاں جاؤ گے گرو تمہارے ساتھ ہے اپنے آپ لے گا جہاں چمن جلے گی پروانے خود خدا اب ایک سوال رہ گیا کہ میڈیٹیشن کے بغیر کام نہیں بنتا ایک پیوٹ چاہیے نا جس پر وہ چیز چل سکے کیونکہ تو ہوتا ہے نا کوئی مشینی چلتی ہے تو اس کے نیچے آدھار ہوتا اس پر وہ کچھ وہ چل سکتی ہے کسی چیز پیوٹ کون سی چیز کا ہو زندگی وہ میڈیٹیشن یہ سب چیزیں کہاں سے چلتی ہیں پیوٹ میڈیٹیشن سے میڈیٹیشن میں کیا باہر سے کٹ آف ہو کر انترمخ ساری سب بھی ہاتھ میں بیٹھی یہ پیوٹ اس پر سارا سرس آگے چلے جب تک یہ نہیں تو میڈیٹیشن پیوٹ ہے جس وجہ یہ سب چیز ڈھونڈتی ہے یہ کہہ رہا تو پیوٹ آف لائف کیا ہے میڈیٹیشن اور گول آف لائف کیا ہے زندگی کا آدر منس جن بھاگوں سے ملا ہے وہی عرض کر رہا تھا کہ گول آف لائف کیا ہے زندگی کا آدر کیا ہے منس جن بھاگوں سے ملا ہے اس سے سب سے بڑا آدر ہماری زندگی کا کیا ہے وہ سیلف ریئلائزیشن سیلف نالج سیلف نالج سے آگے سلسلہ کریں اوور سیلف کا اور کاسمک اویئرنیس کانشیسنیس کا کہو سپر کانشیسنیس تو منوشی پاس اور سیلف نالج سیلف کانشیسنیس کہاں سے شروع ہوگی جب آپ اینالائز کر سکو گے اپنی آتما کو جس اور یہ سیلف انالیسس کا مضمون کہو رائزنگ ابو باڈی کانشیسنیس کا مضمون کہو یہ کہاں سے شروع ہوگا پریکٹیکلی جسم جسمانی سے اوپر آنے ساری عمر سادھن کرتے رہو ساری عمر پڑھتے رہو ساری عمر گاتے بجاتے ناچتے رہو ارے بھائی جب تک سیلف انالیسس جسم سے تم اوپر نہیں آتے یہ پیوٹ آف لائف کے لیے بڑی مزید تو اوپر آنے کے لیے جو تم کو لا سکتا ہے اس کا نام سادھو سنت اور مہاتما اس کا نام ہے ستسنگ وہ تمہیں تھوڑے نئے خیال سے اس کا کوئی خط نہیں گرمکھ کو تو دھار دار دے نام ہے گنی وہ تھوڑا کہتا ہے چلو بیٹھ جاؤ بیٹھنے کے بعد پوچھتا کیوں میں کیا دیکھا جس میں گر گیا کہ ہاں کوئی نظر آیا یہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ آیا جس میں یہ اس کا نام ہے سادھو سنت اور مہاتما آپ سمجھ رہے ہیں بات کیا بڑی سادہ لفظ میں پیش کی جا رہے ہیں ایک پڑھا بھی اور ایک ان پڑھ بھی دونوں ہی جس کو سمجھتے ہیں سارے مہاپرش نے یہی کہا پراپت مانوک دے ہریا گووند مل کے چلی گئی ये प्रभु के पाने का वक्त है। प्रभु को तब पा सकोगे जब तुम अपने आप को पा सकोगे। तुम कहोगे हम गुम हो गए, हाँ वाकई हर के मार कर दे बर खुद पेश ना बीना न कर, जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं। अरे वो कौन सा जुल्म है जो हमने अपने आप पर किया है। गुम कर दे इधर ये खाना साध्य समझा, इस जिसम के अंतर हम रहने वाले इसी को गुम कर। तुम कहाँ होगी तो विचार है अपने आप की तरफ कभी नहीं। इंदो के घाट का बड़ा ज्ञान लिया, बारी बड़ी सच्ची की अपने आप को कुछ पता नहीं कौन सा। तो इसकी अलग है कहां से शुरू होती है, अपने आप से। तो प्रभु का पाना कब होगा, जब तुम अपने आप को पाओ। बात यह है पुराने उर्दू के कायदों में एक लतीफा आया करता था, उसमें यह था देखा तो एक शख्स सजदे में पड़ा है और खुदा का शुक्र कर रहा। लोगों ने पूछा अरे भाई किस बात पे शुक्र करते, तो कहने लगे कि कल रात चोर आए थे मेरा घोड़ा चोर ले गया। चले इस बार भाई इसको कौन सी बात शुक्राने की है, कि भाई शुक्र इस बात में है कि मैं घोड़े पर सवार नहीं था, नहीं तो मुझे भी चोर ले जाते। बात तो बड़ी हंसी की मालूम होती, मगर वो बड़ा सियाना था, सवार को बचा लिया था घोड़े को ले गए। हमने घोड़े को पकड़े रखा सवार आ गए। क्यों भाई बात तो यही है नहीं, तो गोल ऑफ लाइफ क्या है, खत्म न जाने इन्हें बावरी क्या कर बढ़ाई। अस अनुभव को नहीं पाया है क्या बढ़ाई करते हो मनुष्य पाकर। बातन भगत न हो छादो चले, ये बातों का मजमून नहीं, ये कथनी का मजमून नहीं, ये करनी का मजमून है। कल जी ने ये अर्ज कर रहा था जो कहते हो वो कर। परमार्थ बड़ा साफ है, कोई गुंजरे नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। मैं जब मगर में गया वहां लोगों ने सवाल किया कि आपने सुख बड़ी सिंपल वे में पेश की है, इतनी आसान ये मुश्किल क्यों बन गए। मैं क्या सुख देखते हैं, सुख तो सिंपल ही है, मुश्किल इसने सुख को नहीं पाया। देवर बीटिंग अबाउट दी बुश, ये नहीं पता कहां हाथ रखने हैं। इसलिए उनकी कमेंट्री जो बन गई इतनी मुश्किल हो गई थी, उनका सबीना भी मुश्किल हो गया। डायरेक्ट मैं ये कह रहा हूं ये चीज ये है, जब गुरु सिद्धांत लिखी गई थी मैं आज करूं हजूर के हुक्म से, तो वो हजूर ने कहा कि वहां भाई हीरा सिंह दर्द थे लाहौर में, आप भी कहते कोई भाई मुझे वो याद करते हैं। जो उन्होंने कहा कि उनको बतला दो बड़े सहने आदमी हैं, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट उनको पेश किया। खैर उसने पढ़ा तो मुझे कहने लगे भाई जब मैं मिला कहने मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा है, मैं प्रोफेसर जोश सिंह के पास गया, उन्होंने गुरमत निर्णय लिखा। कहते मैंने उसके लिए कहा अरे भाई तुमने गुरमत निर्णय लिखा तो है, मैं निर्णय किसी बात का नहीं किया, ये एक ऐसी चीज जिसमें दहेज से करके पेश किया। तो इसलिए भाई इधर याद करके, तो भाई जिसने देखा वो सुख को देखा ध्यान और पढ़ा पढ़ाया ध्यान में फर्क होगा ही नहीं। सिंपल है जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया, इसमें किसी संस्थे की ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा बुद्धि विचार की जरूरत नहीं, बात बड़ी साफ और सुन। साध के संग बुझे प्रभु मेरा, मालूम तो बस पहुंच गए, नजदीक मालूम होने लगता है ना, समझ आने लगती है बात क्या। जब वहां से चले जब वही चीज बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो ये है गोल ऑफ लाइफ, इसको पाना है हमने, मनुष्य इन भागों से मिला है। अगर इसको पा लिया हमारा जीवन सफल हो गया, अगर नहीं पाया तो गुरुवदा किताब क्या फरमाते हैं, उनको 70-72 साल की तलाश के बाद ये चीज मिली। वो फरमाते हैं धैर्य खाया, धैर्य सोया, धैर्य का पर अंग चढ़ाया। तुम्हारे खाने पीने पहनने पर सोने पर टांगे पटारने पर सारी उम्र किसम ही के बनाने पर हजार हजार बार लाख रहे शरीर कुटुम्ब सहित इस शरीर मनुष्य जीवन पाने पर भी हजार बार लाख, बाल बच्चों के पालते ही रहे सारी उम्र इस पर भी हजार हजार बार लानत है। अगर मनुष्य जीवन पाकर प्रभु को नहीं पाया तो जीवन बर्बाद। ये अनुभवी पुष्प का
نظریہ ہے جو ہم کو پیش کرتے رہے ہمیشہ سے. آج بھی وہی سوال. تو یہ ہے گول آف لائف. تو اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے, میں نے ابھی پیش کیا تھا آپ کو سیلف لیس سروس. سروس کرو, پریم کرو اور اس کے ساتھ جنرس بنو, بانٹ کر کھاؤ. ایک بھائیوں کا آپ کو پتا کیا ادھوریا, نام جپو اور ونڈ چھکو, ونڈ چھکو, بانٹ کر کھانا سیکھ جاؤ. اس ملک کی کیا دنیا میں کسی کی بھی دکھ نہ رہے, یہ بانٹ کر ہم نہیں کھاتے, ہم ہولڈنگ کرتے ہیں, ہولڈنگ میں سب دکھ. اور کیا کرو, میڈیٹیٹ کرو اور ریئلائز کرو. یہ سب پرمارتھ کا تھوڑے سے لوگوں میں ڈائجسٹ ہے جو آپ کے سامنے آئے. تو اس لیے ہمیں منشی پا کر کیا کرنا ہوگا آپ کو پتا ہو, میں نویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا تو مشن اسکول میں پڑھا کرتا تھا, وہاں پر ایک مشن بھی آئے, اسے پوچھا تم کس ایم سے پڑھ رہے, تمہارا ایم آف لائف کیا. کسی نے کہا میں نے تحصیلدار بننا ہے, کسی نے کہا میں نے وکیل بننا ہے, کوئی کہے میں نے جج بننا ہے. اپنی اپنی امبیشن ہوتی تھا. جب میری باری آئے مجھ سے پوچھا بھائی تم کیوں بچتے ہو میں, تو میں نے اس کو کہا آئی ریڈ فار نالج, میں جان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, میں جانوں مجھے کیا ہے, یہ کیا سلسلہ کیا اس کی خاطر پڑھ رہا ہوں. انہوں نے ایک گھنٹہ ٹال دیا. تو اس لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, ہمیں ریجنریٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ریجنریٹ آپ سمجھ کیوں, جو چیز آگے موجود ہے مگر ہم بھول گئے تو اس کو پھر نئے سے ریکوائر, ہم نے کوئی نئی چیز کو امپورٹ نہیں کرنا, اس میں ڈالنا نہیں, وہی حقیقت جو تم میں ہے اس کو باہر سے ہٹ کر اس کو نئے سر سے ابھارنا ہے. یہ ریجنریٹ یور سیلف, کیا درست کرو, کوشش کرو تم ایک آئیڈیل مین بن جاؤ, پورنتا کو پاؤ, پرفیکشن کو حاصل کرو. پرفیکشن از دی گول آف لائف. کیسے پرفیکٹ بنو, بی جی پرفیکٹ ایز یور فادر از ان ہیون, ایسے پرفیکٹ بنو جیسا تمہارا پتا آسمان ہو, ایسے پرفیکٹ. کبیر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیسا ہونا چاہیے سادھو کو, انہوں نے کئی مثالیں دے دے کر پھر رد کی. کہتے روڑا ہو رہو باز کا رستے کے روڑے بن جاؤ, کہتے پنچھی کو دکھ دے, یہ تو پنچھی کو دکھ دینے کا کام بن جاؤ. کہتے یہ ٹھیک نہیں تھا, یہ آدر سے اچھا نہیں کیا بنو, کہتے جو دھرنی میں تھے جیسے جس کی دست ہوتی ہے آپ سے بن جاؤ. چلے یہ بھی مثال ٹھیک نہیں, یہ بھی آدر سے اچھا نہیں, یہ بھی ہوا چلتی ہے کپڑوں کو لگ جاتی ہے. کہتے نہیں پانی کی طرح بن جاؤ, کہتے پانی کا عادت ٹھیک نہیں, وہ بھی کبھی گرم ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا ہوتا. تو کہتے پھر کیسے ہونا چاہیے, کہتے ہر جانا ہر ہی جیسا چاہیے. کہو چاہنے ایک ہی بات, ارے بھائی اگر ایک کرسچن لٹریچر چار سو تیس کی جائے کرسچن کو, کہتے ہاں ٹھیک, جو جس سماج ہو وہیں سے اس کو پیشی, کہتے ہاں ٹھیک. ارے بھائی سب مذہبوں کا اگر آپ کو پہل سبھی آپ ریلیجن ہو جائے, آپ دیکھیں ہم سب بھائی, کوئی اختلاف. اس لیے میں نے جو اپنے حضور سے بات سمجھی تھی وہ پہل سبھی آف ریلیجن کا ہر ایک میں وہی چیز ملتی ہے. اس لیے ہم کو جنریٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو, نئے طریقے سے ابھار مل سکے, آئیڈیل مین بننے کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو بی این آئیڈیل مین, آدرش جیون بناؤ اور نتیجہ کیا ہوگا, نئی سولیزیشن بن جائے, نئی دنیا بن جائے گی. جس کو پا کر آج جو دنیا بہترین ہو رہی ہے وہ سب آگے کنگڈم آف گاڈ ول کم آن ارتھ, پرماتما کی بادشاہ دنیا میں آ جائے گی. اس لیے آج کے دن میں یہ یاد کروں گا کیا انسان کی کیا ختم کرنے والے ہو. کیا ہے انسان کی جا ہیومینٹی وے کا جاگو, کیا کرو ٹرن گاڈ ورڈ پرماتما کی طرف لے, اب زمین دنیا کی طرف لے. ایک مومن اور کافر میں فرق کیا ہے گرو مکھ اور من مکھ میں, کہ گرو مکھ کبو اس پربھو کی طرف ہے اتنا ہے کہ دنیا بھول گئی ہے. من مکھ یا کافر میں فرق یہی ہے کہ دنیا اتنا اس کا منہ بن گئی کہ پربھو بھول گیا. ہم جتنے قدم اٹھا رہے ہیں دنیا کی طرف اٹھا رہے ہیں, ارے بھائی ادھر سے منہ اٹھاؤ ادھر کرو, سائیں کی پاؤنا ہے جو پٹنا سے ادھر لاؤ ادھر منہ کرو بھائی. ہیومینٹی ویک آپ کس طرف کم گاڈ ہو پرماتما کی, اب کہاں جا رہے ہیں پرماتما تم میں, تم باہر پھیلاؤ میں جا رہے ہیں, اسے دور جا رہے ہو, اس کی طرف منہ کرو. ٹرن ٹوچ ڈیوائن لائٹ, اس مہان جوتی کی طرف نظر کرو, اس کے دیکھنے والے بنو. وہی سچے معنوں میں سکھ ہے جس کے اندر پورن جوت کا وکاس ہے. پورن جوت جگہ کٹ میں سب خالص قائم خالص کر, جس کے اندر پورن جوتی کا وکاس ہو گیا وہی سچا خالص ہے. جس کے اندر لائٹ آف گاڈ پرگٹ ہوئی لائٹ آف گاڈ کو دیکھتا وہ سچا کرسچن ہے. جو پرماتما کی جوتی کو گھٹ میں دیکھتا اس کا نام ہندو ہے. ارے بھائی جو خدا کے نور کو اس کو دور پر چل کر دیکھتا ہے اس کا نام مسلمان ہے. بھائی اس کی جوتی کی دیکھنے والے بنو. کب وائل دیر دیکھتا ہے جس طرح وقت آپ کے پاس اب باقی ہے اس میں, جو وقت گزر گیا تو گزر گیا. شکرت کر لے نام سمر لے, خبر نہیں کل کی, کل کا کیا خبر نہیں پل. اس لیے جب تک آپ کے پاس سانس چل رہا ہے جو گزر گیا وقت وہ برباد ہو گیا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ٹائم کو فور لاکھ سے پکڑو, جو وقت ابھی باقی ہے اس میں یہ بات کرو ٹرن گاڈ ورڈ پرماتما کی طرف. پرماتما تمہاری آتما کی آتما ہے, گرنتھ و پوتھیوں میں سویا پڑا نہیں. یاد رکھو ایک جائی نہیں وہ ہر جائی ہے, اور تمہاری آتما کی آتما ہے, جب باہر سے ہٹو گے وہ آگے ہی موجود ہے. تو یہ بات کرنا ہے, یہ میری آج کے دن آپ سے یہی پکار کہو آواز کہو جو مجھے حضور کی طرف یہ کی رچی رہی تھی. یہ مشن ہے تو اس کو پورا کرنا, اس میں میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. آپ بہت سارے نظرانے لے کر آئے ہو نا کئی کئی بھائی بھائی, میں آپ سے یہی نظرانہ مانگتا ہوں کہ اس میں تم مدد کرو. وہ مدد کرنا کیا ہے جو میں کہتا ہوں اسے, باہر سے ہٹو پرماتما کی طرف منہ کرو. پرماتما گاڈ پاور جس پول پر اظہار کر رہا ہے جب وہ نام دیتا ہے ساتھ ہو گئے. اس کے لیے چار چیزیں ہیں جو تمہاری مددگار ہوں, ان چیزوں کو پلے باندھو. پہلی بھی بات پرماتما کی فون پر یقین رکھو, فیتھ ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ. پرماتما کی فون پر یقین, جب آدرشی کوئی نہیں زمین ہی کوئی نہیں, فیتھ ان دی روٹ کاز آف آل ریلیجن. میں امریکہ میں گیا وہاں مجھے سائنٹسٹ ملے, بڑی بات چیت ہونے کے بعد میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے کبھی ایٹم کو اینالائز کیا ہے؟ کہتے ہاں. کیا پایا ہے؟ کہ اس میں ایک موومنٹ ہو رہی, حرکت ہو رہی. حرکت میں نے اس سے پوچھی تو وہ جو حرکت جو ہو رہی ہے بڑی باقاعدگی سے ہے, ویل کنٹرول ہے یا ہیزرڈ ہے؟ کہتے ہیں بڑی بھاری باقاعدگی سے ہے, ویل کنٹرول. مگر وہ کون سی چیز ہے جو اس میں کنٹرول کر رہی, واٹ از دیٹ؟ ارے بھائی اس کو جانا, یہ سارا سسٹم ایسے ایپ حاضر نہیں ہے, یہ ایک لینڈ ہے, ایک آدھار پر چل رہا. خواہ تم اس کو جانو یا نہ جانو. ایک ایسی تھا مرنے لگا, اس نے اپنے مکان میں لکھا تھا گاڈ از نو ویئر, ایک بچہ آیا تو پڑھنے لگا ڈی او ڈی باغ آئی ایس آئی از این او ڈبلو ناؤ ایچ ای آر ہیئر گاڈ از ناؤ ہیئر پرماتما یہاں ہے کہ ہاں بچہ میں دیکھتا ہوں ساری عمر ایسی ہے. ارے بھائی اس بات کی سمجھ آتی ہے جب انت سمے آتا ہے یا اب کسی مہاپرش کی کرپا سے وہ آنکھ بولے یہ کانسس کو ورکر آپ کی ڈیوائن کا لائن بن جائے. اگر یہ نہ بھی بنے تو سو سے آنے سارے مہاتما کہتے ہیں کہ ایک ہستی ایک ذات حق کرے اسی کو ہائپوتھیسس لے سو سے آنے ایک ہی مت جو اس کو نہیں بھی مانتے. ارے بھائی سائنس بھی اب اس نتیجہ پر پہنچی کہ سب چیز کسی ایک آدھار پر چل رہی. لیٹلی مجھے ایک چٹھی آئی تھی امریکہ سے کہ وہ جو موومنٹ ایٹم میں ہو رہی ہے اس میں ایک آواز بھی ہو رہی ہے. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے سائنس میں اس میں دھنی ہو رہی ہے جس کو پرنو کی جس دھنی کے ساتھ آپ کو شبد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. میوزک آف دی اسپیئر ایرسٹاٹل نے کہا ارسطو نے مجھے ایک آواز سنائے گی جو مجھے سائنس کر ایک نئی دنیا میں لے گئی وہ تم میں ہے. ارے بھائی تم کو اس کا کانٹیکٹ دیا جاتا ہے کتنی خوش قسمت ہو سکتی. تو پہلی ضرور فیت ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ پر میں اپنے کی ہون میں یقین. دوسری بات یرننگ فار لیبرنگ آزادی کی لیے جس کو بھوک ہی نہیں کو روٹی بھی پیش کرے گا اچھے کھائے گی. مہاتماؤں کے کرام پڑھو انہوں نے مسٹری آف لائف کو حل کیا ہے. منشیوں کے پانے کے لیے جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہ پیش کیا ہے اس کو پڑھ کر دیکھو ٹائم از پاسبل. آخر ایک سمے آئے گا جب آپ کو جسم کو چھوڑنا پڑے گا. اگر مسٹری آف لائف کو نہیں حل کیا یو آر نو ویئر. صرف لبریشن کا خیال ہو تم کو اپنے آپ کے بدلنے کا خیال ہو. یہ کہاں سے بنے گا جو بدلے ہیں ان کی صحبت کرو. وویج کے ساتھ گرتھ کو پوتھی کا سہایک دہائی کرو اس سے بنے. ویلوز آف لائف کو سمجھو یہ دوسری بات. تیسری بات فیتھ ان دی ورڈز آف دی گرو. جوان بھائی پوچھ ملا اس کے بچوں پر وشواس بولو بچوں نہیں اس کے پاس دیکھو نہ پراپیگنڈسٹ ہے نہ ایکٹنگ پوزنگ ہے نہ شو پسند ہے خود نما ہے. اس کو ایک چیز ملی ہے وہ بھائیوں کی طرح تمہیں پیش کر رہا ہے. جو بھی انبھائی اس کے بچوں پر وشواس ہز ورڈ از دی بائبل ٹرو. وہی قرآن وہی ویج وہی گرنتھ. اگر وشواس نہیں کرو گے تو کیا کرو. گرو مکھ بنو من مکھ نہ بنو. گرو مکھ بنو گے تو اس کے بچنوں کا آدھار ہوگا. گرو کا بچن سدا سکھدائی. گرو کے بچن کسی جب پھانسی جب کی پھانسی سے لبریٹ کرے گا. وہ لبریٹ ہوا تم تو کہتے میں دے کرو بھائی. اگر آپ کو تھوڑا ثبوت نہیں ملتا ہے روپئے میں تو پیسہ دو پیسے کیا تمہیں جسم کے روح پراتن سر لائف کا وکاس ہوتا ہے کچھ ملا نا. اگر تھوڑا ملے تو زیادہ کی بھی امید ہو رہی ہے. کچھ تو جانتا ہے اس طرف سے نہیں. میں جب شروع میں حضور کے چرنوں میں گیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا حضور کتنے بڑے ہیں. میں نے سوال کیا کہ حضور کتنے بڑے ہیں. میں کہا بھائی مجھے یہ پتا نہیں کتنے بڑے ہیں اتنا ہے کہ میرے لیے بہت کافی. اچھی بات تو یہی ہے تو وہ کتنے بڑے ہیں ولیرا ولی نے اتنا سر. وہ تو وہی جائے جو سپر کانشیس اسٹیٹ میں جائے وہ جانے سپر کانشیس کہاں سے جائے. مگر بھائی میرے لیے بہت کام. ارے بھائی اتنا بھی وشواس تو ہو. ہم کیوں بھولے بچتے ہیں. گرو ملنے پر بھی وشواس نہیں ہے. چیز ملی ہے پھر بھی پرواہ نہیں کی. کتنی بدقسم کی ہمیں اچھے. وہ کہتا ہے جیون کو نیک پاک رکھو پھر ہم اپنی من مانی باتیں کرتے ہیں. بیسنگ کوٹ ورسز فرام قرآن. جب کوئی شیطانیت کرتا ہے قرآن صرف میں یہ لکھا فلانا مہاتما نے کیا فلانے نے کیا अरे भाई एक मांदरी है, अगर वो सांपो के दरमियान रहते हो तो ज्यादा असर नहीं करती, तुमको तो करेगी, जब तक तुम सिर्फ कुछ नहीं बनते तो कहता ना मन दीदी डुआ आजादी बर्ड ना देहर चलाऊ जो बचन गुरु पूरे के हो तो मैं ठीक हाथ से बांधा इफ यू लव मी की माई कमांड, अगर तुम इसे प्यार करते हो गुरु कहता मेरा कहना मानो भाई उसको तुम्हारा वाला है उसको क्या मिलता है, वो तुमसे कुछ लेता है या लेता है? वो तो यही आसान था बेचारे भाई तुम्हारा जीवन सफल हो गया तुम्हारी बन गया सब याद करो चल मेरा छुटकारा हो जाए तो गुरु के बचनों पर विश्वास नहाय गुरु आखिरी चीज श्रद्धा होनी बगैर श्रद्धा के काम नहीं फेत कहो श्रद्धा कहो भरोसा कहो विश्वास करो जैसे एक बीमार आदमी ऑपरेशन के लिए अपना जीवन हवाले कर देता है अच्छा बता तो साहब आप जानो मैं तुम्हारे हवाले हूँ तो कौन तुम बताओ माया से इतरा तो धनी छापे सबो गए इतरा मैं तुम्हारे हवाले का तुम जानो अरे भाई ये सेल्फ सरेंडर कहो ये क्या चीज है भगवान जी के लिए सारे गीता का उपदेश देता है किसी तरह से माफ करना अर्जुन की तसली नहीं हुई अंतर में अनुभव भी कराया आपने दर्शन भी कराया त्रिलोकी भी चलाती दिखाई ये भी किया वो भी किया कई किस्म के कर्म भक्ति और ज्ञान के उपदेश भी दिए तो भी उसकी तसली नहीं आखिर कहा क्या अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ गुरु गुरु की हैसियत नहीं था लीव ऑल इन फॉलोइंग ये आप ही अगर ये चार चीजें तुम करोगे अब कामयाबी होगी इन चीजों की सभी के सबब से हमारा काम बनता नहीं है बिगड़ गया अब इसके साथ तीन चीजें और हैं हमारे इस तरफ क्यों नहीं बनता इसका भी कारण होने के हर चीज का कारण है हमें ये शिकायत होती है कि भाई हमने पढ़ा भी सुना भी गुरु धारण भी किया फिर भी नहीं बन रहा इसका कारण क्या तो इसके लिए हमारे रस्ते में तीन रुकावट गौर से सुन पहली बात दुनिया की चीजों से मोहब्बत अटैचमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ये पहली शब्द ये कैसे बनी अटैचमेंट विद द बॉडी जिसम के साथ हमसे आत्मा देहधारी जिसम से मोहब्बत बन गई अटैचमेंट बन गई जिसम से अटैचमेंट बनी दुनिया की चीजों से अटैचमेंट बन गई और अटैचमेंट विद द सेंसेस इनों के भोगों में बन गए ये तीन चीजें रुकावट है कॉर्नर डिजायर कहो जिस्मानियत के तलकात और इनों के भोगों रख दिखा ये रुकावट बी डिजायर लेस कामना बहीन हो जाओ जिसम भी चंद्रोदा है इससे काम लो गुजारे मात्र बरतो इजमाही महात्मा ये नहीं कहते घर बात तोड़ के जंगलों की राह लो वो ये कहते दुनिया में रहो मगर ये सब उसी के अर्पण करो तन भी धन भी और मन भी मौलाना रूम साहब ने एक जगह प्रार्थना की है ऐ खुदा क्या करो फिर बेगाना रहा दरकार पर मेरी बुद्धि मुझको गुमराही देने वाली उसको अपने कब्जे में रख दूध के बिगड़ते हुए अक्ल के बिगड़ में कोई देर नहीं लगती याद रखो मन इंद्रियों की घाट पर मत सोचो गुरु के घाट पर सोचो गुरु मुक्त तो कबीर साहब के इस दोहे के मुताबिक अगर अपना आप जीवन बना लोगे तो काम बन जाएगा फिर सवाल एक रह गया ये बात तो समझ आएगी जिस हम इंद्रियों के भोगों रसों से और दुनिया की अटैचमेंट हमारे रस्ते में रुकावटें बन रही हैं ये कैसे दूर हो सवाल ये जिसम पैदा होती है हमारे साथ आता है जाती ही हमारे साथ नहीं वो चीजें जो इसके जरिए बनी है वो कैसे जाती بڑی عقل سے بڑی سمجھ سے کہا. بڑے بڑی چیزیں بڑی بڑی دنیا کی چیزیں ہم نے بنائے, بڑی جائیدادیں لاکھوں کروڑوں اربیں روپئے اکٹھے کیے, دنیا کا بڑا نام نامی ہوا, سب کچھ ہوا, جاتے ہی قوم ساتھ گیا. کوئی نانک کچڑیا سنتوش دھول سجن سنت پتیاں اے جلندر وچنے وہ مایا نہ جا سکتو. اے نانک تم کچوں کا سنتوش ہو جو تمہارے ساتھ نہیں رہے, نہ جو کہ تم رہے گا نہ جو کہ بھوگ رہیں گے نہ باہری سامان رہیں گے. ایسے سے تعلق پیدا کرو جو تم کو مرنے پر بھی نہ دھول سجن سنت پتیاں یہ جرندے وچڑے بویا نہیں جا سکتے, وہ مر کر بھی تم کو نہیں پڑا. میں امریکہ میں گیا, لوگ کہنے لگے کرائسٹ کب واپس آئے گا, ویل از کرائسٹ ریٹرن. میں نے کہا کرائسٹ ہیز ایور لیفٹ یو, کیا اس نے کبھی تم کو چھوڑا بھی ہے؟ اس نے تو کہا آئی کین نیور لیو ان آور فورسز دس از دی اینڈ آف دی ورلڈ, میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, یہ دنیا کی آخرت تک بھی. ارے بھائی جو کہتا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ گیا کہاں؟ وہ تو نہیں گیا جس پول پر وہ کام کرتا تھا, جس کو جیزس کہتے تھے وہ چلا گیا. کرائسٹ پاور نہیں جاتی ہے, گاڈ پاور ہے, وہ گرو پاور. گرو جب نام دیتا ہے ساتھ ہو بیٹھتا, ساتھ ہو بیٹھتا اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا. حضور فرمایا کرتے تھے جب تک اس کو ستپرش کی گود میں نہ ہوتا. کیا آپ کو اتنا بھروسہ بھی نہیں؟ ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ایک سامنے پر آپ سوار ہو گئے, کرایہ اس کو نہیں دیا, وہ اپنی پگڑی اتار کے بھی تنگ باندھتا ہے. ارے بھائی تم کو ایک تانگا چلانے والے پر بھروسہ ہے کہ تم کو وہاں پہنچائے گا جس نے ابھی کوئی مزدوری نہیں دی. ارے بھائی تم کو گرو کے بچنوں پر وشواس نہیں کہ وہ تم کو سچ پر کی گور میں پہنچائے گا. بڑے کھول بڑی چھوٹی مثال دے کر بڑا اس پرمر تعلیم دیا کرتے تھے سنتوں کا. یہی سارے سادہ باتوں میں پرمر چیزیں بتانا, ویدوں شاستروں گرنتھوں کا سار پیش کر دیتا, یہ ان کا کام کر. تو یہ چیزیں ہیں جس کے سبب سے ہم دنیا میں, ہماری بھی ادھر نہیں جاتی. اب اس کے لیے کیا کرنا ہو سوال یہ رہ گیا. ایک چیز آخری رہ گئی تھوڑے سے دفتوں میں, وہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس ڈیوینٹی کی یا روحانیت کی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتا جانا, اس کے لیے چار چیزوں کا دھیان کریے. خاص طور پہلے اہنسا, اہنسا نان وائلنس, کسی کا دل نہیں دکھا. یہ تو پیا ملن بھی سکھ کا یا نہ کھائی جائے. اگر تم پربھو کو پانا چاہتے ہو تو کسی کے دل کو نہ دکھا. پہلی بات تم پانا چاہتے ہو اس کو وہ گٹ گٹ میں ہے, تم لوگوں کو دکھ دیتے ہو تھے. یہ تب ہوگا جب تمہارا پیار ہوگا, یو لو گاڈ. اگر تم پرماتما سے پریم کرو گے, پرماتما سب میں سب سے پریم کرو گے, قدرتی بات نن وائلنس ان پارٹ. اہنسا پرمو دھرم, اہنسا ایک پرم دھرم ہے. دھرم تو ساری ہے, دھرم وہی ہے جس سے دکھ بنے, اور پرم دو دھرم وہ ہے جس سے سب سے بڑا سکھ ملا. تو اہنسا کو دھارن کرو کسی کی جی سے نظر دل سے خیال میں, نہ بچن سے نہ کرم سے. پہلی بات. دوسرے سچ کو دھارن کرو, سچ کو ستیم, سچ کو دھارن کرو. سچ بولو, سچ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز تمہارے دل میں ہو وہی زبان پر ہو, وہی تمہارا دماغ بھی سوچے. جب تینوں متفق ہو تو سمجھے یہ سچ ہے, نہیں تو کپٹ ہے, فریب ہے, دھوکھا ہے, ایکٹنگ پوزنگ ہے, سانس بننا ہے اور جھوٹ بولنا. زبان کچھ کہے دل کچھ کہے, کیوں بھائی اس بات کو چھوڑ. جتنا تم سچ سے دور جاتے ہو جھوٹ بولتے ہو اتنے ہی تمہارے اور پرماتما کے درمیان وہ پردہ اور موٹا ہو جاتا. جیسی چیز ہے ویسی پیش کرو, بچے بن جاؤ, معاف کرنا. ہمیشہ کہتے تھے وی لائک چلڈرن, बच्चे बनो है। परमात्मा की बादशाह केवल बच्चों के लिए, यही कह चुके जिन्हें महापुरुष हैं। ज्यादातर उनका हमेशा बच्चों से प्रेम रहता, तो वो एक्टिंग पोजिंग नहीं, जो दिल में वही बात बाहर करते। एक बच्चे का जिक्र आता है, कोई भाई उसको पूछने के लिए आया उसके पिता को, इसलिए मैं देख कर आती हूँ। गए अंदर तो अंदर पिता ने कहा कि कह दो कि वो घर में नहीं है। बाहर गया तो क्या मैंने, मेरा पिताजी कहते हैं कि कह दो घर में नहीं है। आपको पता है ये क्यों चीजें बनती, हम लोग बच्चों को खराब करते। इसलिए मैं आज करूंगा कि घरों को बनाओ, घरों को बनाओ। घरों को कब बनेंगे घर, जब तुम बनोगे। इतने भाई बैठे हो, बीवी बैठे हो, अगर आज से घर बनाना शुरू कर दो, सत को धारण करो, किसी का दिल ना दुखाओ। बच्चे नकल करते जैसा तुम्हारा जीवन है वैसा करते। मैं कई बार आगे भी जिक्र किया है कि मेरी उम्र के भाई जब हमारे छोटे हम छोटे थे ना, बच्चे पैदा होते थे, हम पूछते थे बच्चे कहाँ से आए, तो कहते थे दाई दे गई है दाई। हम मान लेते थे यदि हमारे माता पिता का इतना जीवन दुष्ट होता था, कभी ख्याल नहीं था बच्चे आते कहाँ से। अब छोटे बच्चे को पूछे सब कुछ करते हैं, क्यों हमारे जीवन करते। भाई याद रखो, घर से रिफॉर्म शुरू होगी। घर बनाने शुरू कर दो, उस्ताद भी कुछ कर सकेंगे और गुरु महात्मा भी कुछ आसानी से काम कर सकेंगे। जब तक घर नहीं बनते सब कुछ बिगड़ जाएगा। कह रहे कि बिगड़ी कह तो हो, आज से बनाने शुरू कर दो। मुझे जो समझ आई मैं सही कर रहा हूँ। मैं अमेरिका में गया, वहां मुझे टेलीविजन पर बुलाया गया, उन्होंने सवाल किया, वह लुक किया, आई एम योर नाटी बॉय, मैं तुम्हारा एक बड़ा क्या नाफरमा बदार बड़ा खराब बच्चा हूँ, तुम मुझे कैसे अच्छा बनाओगे। तो मैंने उनको यही कहा, एग्जाम्पल बेटर देन टीचर, मुझे नमूना बनाओ। तो हमें नमूना बनना चाहिए, जैसे तुम बच्चों को बनाना चाहते हो आप बनो। आप बच्चों को सिखाते हो झूठ बोलना, आप बच्चों को सिखाते हो हर एक इल्लत और आलाय। अगर आपका जीवन साफ हो, शांति का हो, सुखाव का हो, बच्चे रहते अपने आप बनेंगे, वो इमिटेट करना जानते। घरों को बना माफ करना, हालत क्या बन गई, घर भी बिगड़ गए, सिनेमा में जाते हैं बच्चे भी नाच रहे हैं, माता भी नाच रही, पिता भी नाच रहा, क्या देखे लव स्टोरी। मैं लड़का था कार्य में गया, उन्हें एक दिन आकर मुझे कहने बाबू जी, कहते मेरे प्रोफेसर ने मुझे सवाल किया, हैव यू एवर लव्ड, कि तुमने कभी कहीं प्रेम किया है, कभी कुछ शर्म नहीं है ये बात करने से। ऐसे एटमॉस्फेयर में डेवलप हुआ था, कहते ये शर्म नहीं है, आज क्या लव स्टोरी सुनाई जाती। घर के बिगड़े हुए स्कूलों में और बिगड़ जाते, ये हालत है हमारी। क्यों हमारी तरक्की नहीं हो रही, इसका इलाज यही था, वो इलाज नहीं करेंगे। गवर्नमेंटें क्या कर सकती है, जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, मैन मेकिंग नहीं कर सकती। याद है ये काम संतों का, अनुभवी पुरुषों का, गुरु बेचारे क्या, उनको बड़ी मुश्किल बन रही। हजार बार कहते हैं एक क्या ना कोई हिम्मत, उतने ही मानते जितना उनका मन माने। हजार गले फाड़ो, हजार को डायरी रखो, अपनी जीवन की पता रखो, भजन करो। अरे भाई कितने भाई आप में बैठे हो जो आप कहना मान रहे हो, कहना तो मानो कि नहीं। मैंने अभी अर्ज किया था, अगर आपको मुबारक ये दिन तभी हो सकता है मुझे, कि अगर मेरा तुम कहना मानो जो मुझे समझ आई मैं आपके सामने रख लू। कितने भाई हो जो कहना मान रहे हो। मैं हर बार जब भी कभी हजूर का जन्मदिन आता है या और भंडारा आता है, मैं कहती हूँ भाइयों मेरी एक अर्ज मान लो, भजन करो, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो। कहने को सब हाथ खड़े कर देते हैं, करने को कोई भी नहीं रहता। सौ इकरार करेंगे और शायद दो चार करने वाले हो, बाकी सब में मैं सबको कहती हूँ डायरी रखो, भेजो के बाद भेज रहे हो तुम। ये मुश्किल क्यों बन रही है वो मैं पेश कर रहा हूँ। आप किसी महात्मा के कहने का विश्वास नहीं करते, बिगड़ी हालत खबरें करते, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग लगे रहो, जो सुनते उसको पले बांधो, फिर उसको जीवन का हिस्सा बनाओ, तब तुम्हारी हालत आगे। कहना तो मानना नहीं जी, दया करो दया करो। अरे दया आसमानों से आज दया तो तुम्हारे अंतर में, कहना मानो अंतर मेडिटेट करो, साइलेंस ऑफ द हार्ट में बैठो, देखो दया मिलती है कि नहीं। दया तो हो रही है, लेने वाला कोई नहीं मिलता। हजूर फरमाया करते थे हमारे कि सदगुरु तो दोनों हाथ में ले खड़ा, जिस दरवाजे पर खड़ा उस पर वाकई कोई लेने वाला कोई नहीं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आज के दिन मैं वो चीज पेश कर रहा हूं जो हमारी मुश्किलें हैं, उनका हल क्या है, मुझे कैसे फायदा हुआ, आपको कैसे हो सकता। और इन बातों को भूल जाओगे इसके बाद तो जी तुम जाओ। तो घरों को बनाओ भाई, उस्तादों का काम भी आसान हो जाए, गुरु का काम भी आसान हो जाए, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाए। तो पहली बात यह है कि घरों को बनाओ। और कैसे बनेंगे? एक किसी का दिल नहीं दुखाओ, दूसरा सत्य को धारण करो, तीसरे ख्याल से ब्रज के लग जाओ, जीवन को नेक पाओ, राइट लूज ऑफ एवरी। जो ग्रस्त आश्रम में नहीं आए वो देर को पूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा रहे। जो ग्रस्त आश्रम में आए हैं उनको चाहिए जो आइडियो शास्त्रों में हमें दिया गया उसके मुताबिक जीवन करें, ऐसा जीवन के शास्त्रों के मुताबिक है, दैट इज नो बात ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शास्त्र मर्यादा क्या कहती है कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो चीज को बरतो, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे तब तक कोई चालक न हो, ढाई तीन साल का वक्त लग जाएगा। ऐसे दो तीन बाल बच्चे हो भी जाए, एक नारी सदा जैसी मैं जर्मनी वाह बड़े शकील सदाए बच्चे अच्छी स्त्री कुछ देकर मैं क्या देखो खुश होती थी लिए। अरे भाई आपको देखो तो रोना आता, माफ करो क्यों ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं रही, यही एक फाउंडेशन थी। आपको बताइए क्या चीज है, बड़ी चीज की चीज है। 40 कतरे घी के एक कतरा खून का बनता, 40 कतरे खून के एक कतरा चर्बी का बनता, 40 कतरे चर्बी के एक कतरा एक हड्डी का बनता, 40 कतरे हड्डी के जरे के मिलकर एक कतरा मिर्च का बनता, और 40 कतरे मिर्च के बनकर एक कतरा चीनी का बनता। चीनी तीन चीज अगर हमारा जो जीवन बन जाए दुनिया से आधे छोड़ के मेरे ख्याल 75% बीमारियां खत्म, कुछ आलात की बिगाड़ गुस्सा आया एंगर हुआ खूब जोश मारता दिल दिमाग पर असर करता, ये जिन्नी डिबिलिटी ये वो के झगड़े इसी लिए हो रहे, जिन्ने पेन होते हैं इसी की मेहरबानी। ईर्षा द्वेष निंदा चुगली धड़े बंदी पाप सात पढ़ाई इसमें क्या कुछ नहीं, सबके सबसे प्यार करो। आप देखिए कोई बात आप रंग की सुनो, कोई मर गया आपके चेहरे पीला हो जाता है कि नहीं, तो ख्याल का असर जिस्म पर पड़ता। अरे खुशी की बात है तो बातें चल जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है, भारी ख्याल का बड़ा असर पड़ता। अगर हमारे जीवन में सबके लिए भला हो, विश्व का प्रेम हो, पीस भी अंत ऑल द वर्ल्ड हुआ, नानक नाम चेर दी कला तेरे भरे सरबत का भरा, तुझी दिशा की बात हो, इंसान इंसान को देखकर उभार में आएगा, ओवरफ्लो करेगा, सेहत अच्छी होगी कि नहीं। और अनवही कुछ अब आपको भजन देते हैं वो उस वो कॉन्शियस जो राव चल रही है उसके साथ तुम्हारी आत्म भी कॉन्शियस के साथ जोड़कर और उभार मिलता। अरे भजन से तो सेहत बनती, रिपोर्ट करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो और साथ क्या करो संस्कृत कर लो सदाचारी जीवन करो, ये अपने जीवन की पत्तार रखो, डायरी रखो, भजन रोज करो। इन चीजों से ये जो तीन चार रुकावटें हैं, दुनिया की मोहब्बत जिस्म की मोहब्बत को जरूर ऊपर जाने लगी, ऊपर जिस्म का कपड़ा बन जाएगा ना, कल रात अपने आप हाँ गिर से हंसने लगेंगे, अटैचमेंट लूज हो जाएंगे, उस रस को पाकर ये रस पीते हो जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे भाई ये तरीका है मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का, नाम के रस पाने का, जीवन को मुक्त करने का। ارے بھائی یہ تھوڑے سے لفظ ہے جو میں نے آپ کو پیش کیے ہیں وہ نچوڑ جو میں نے زندگی میں پایا. تھوڑے رسوں میں اس کو پلے باندھو, جتنا کرو گے اتنی خوشی کی بات ہے. آج پھر میں عرض کروں گا جنہیں بھائی بہنیں بیٹھے ہو, جو بچن کا ہے گھروں کو بناؤ. گھروں کا بننا تب ہوگا جب آپ کا جیون بنے گا. بچے گھر سے ہی ہوش میں آ جائے. بچوں کو آپ بچاؤ, انتر میں سب کچھ ملتا ان کو. بڑے ان کو بچاؤ, ذرا دیر سے ملتا بڑی شاید دی جاتی. اگر آج آپ کا جیون ہو, بچے پہلے انبھی کچھ ہو کر دنیا میں دنیا کی ادوگتی آپ پر ہے. ری جنریٹ یور سیلف, میں تو یہی کہوں. اے انسان کی جات, پرماتما کی طرف منہ کر, دنیا کی طرف منہ کیے جاتے ہو, وہ ڈیوائن لائف کو پاؤ جو تمہارے اندر موجود ہے. وہ پرماتما جو باتیں کر رہا ہے اس کو سن. ہے در بند جس درمانی نچلی یہاں ساؤ کے پاس رہنے تو جسم کے بندن میں بند رہا ہے, اس پرماتما کی پاس آواز کو نہیں سنتا جو تیرے میں آ رہی ہے. آج کے دن اس کو ستسنگ ختم ہے, اس کو آلے باندھو.
روپ میں مالک کو نانک پربھو یہ ہو جائے.
میری جگ تیری گلی میں, جس گر تیری گلی میں, مرشد تیری گلی میں, مٹ جائے گی ہماری دنیا تیری گلی میں, ستگر تیری گلی میں. آئے ہیں تیرے در پہ ہم زندگی لٹانے, آئے ہیں تیرے در پہ ہم زندگی لٹانے. تو دیکھے یا نہ دیکھے تو جانے یا نہ جانے, وعدہ کریں گے پورا مر کر تیری گلی میں, مرشد تیری گلی میں, مرنا تیری گلی میں, جینا تیری گلی میں, ستگر تیری گلی میں. مٹ جائے گی ہماری دنیا تیری گلی میں, مرشد تیری گلی میں, دل سے تیری محبت ہرگز بھی کم نہ ہوگی, ہم تجھ پہ مر مٹیں گے تجھ کو خبر نہ ہوگی. مرنے کے بعد ہوگا چرچا تیری گلی میں, مرشد تیری گلی مر.
گرو تو ڈھونڈتا پھرتا بھائی, آگا کوئی بندہ مل جائے.
مرنے کو آ رہی ہے دنیا تیری گلی میں, ستگرو تیری گلی میں, مرشد تیری گلی میں, ستگر تیری گلی میں, ریتم تیری گلی میں. جس کو ہے محبوب کی چاہت اسے لازم ہے یہ, سب تمنا چھوڑ دے اپنا بیگانہ چھوڑ دے. ہے شہنشاہ نہیں نہ کو ملتا ہے کبھی ہے شہنشاہ نہیں ناک کو ملتا ہے کبھی تو نہ گرو کو چھوڑ خاں تجھ کو زمانہ چھوڑ دے یار کی گلیوں میں کیوں کر یار جانا چھوڑ دے کیوں بھلا بلبل چمن سے آشیانا چھوڑ دے مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں مٹ جائے گی ہماری دنیا تیری گلی میں مرشد تیری گلی
ہر موبائل کے ساتھ